आगे सबक देखिए भाई। किताबुल वक्फ। قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يزول ملك الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته فيقول إذا مت فقد وقفت داري على كذا. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يزول ملكه بمجرد القول. وقال محمد رحمه الله تعالى لا يزول حتى يجعل للوقف وليا ويسلمه إليه. بے گزشتہ سبق میں شرکت کے مسائل چل رہے تھے، صاحب ہدایہ نے آپ کو شرکت فاسدہ سے متعلقہ احکام بتلائے۔ سب سے پہلے صاحب ہدایہ نے آپ کو یہ بتلایا کہ مباح چیزوں کے اندر شرکت کرنا جائز نہیں ہے، جیسے جنگل سے لکڑیاں لانا یا شکار کھیلنا یا پہاڑ سے پتھر لانا یا مٹی لانا، یہ مباح ہیں۔ جو ان چیزوں کو جمع کر لے گا وہ ان کا مالک ہو جائے گا، تو یہ چیزیں مباح ہیں، لہذا ان کے اندر عقد شرکت جائز نہیں۔ وجہ یہ کہ عقد شرکت کی جو بنیاد ہے وہ وکالت پر ہے، تو عقد شرکت میں ایک دوسرے کا وکیل ہونا ضروری ہے، جبکہ مباح چیز کے اندر وکیل بنانا ہی باطل ہے۔ اور دو دلیلیں ذکر کی صاحب ہدایہ نے، کس چیز کی؟ کہ مباح چیزوں میں وکیل بنانا باطل ہے۔ پہلی دلیل یہ ذکر کی کہ مباح چیز کے اندر موکل کا موکل بننا ہی صحیح نہیں، کیونکہ وہ ان مباح چیزوں کا مالک نہیں اور اس پر اس کو ولایت بھی حاصل نہیں۔ تو معلوم ہوا مباح چیزوں کی توکیل میں موکل کا موکل بننا ہی صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ذکر کی کہ وکیل کا وکیل بننا صحیح نہیں ہے، تو موکل کا موکل بننا بھی صحیح نہیں، یہ ایک دلیل، اور وکیل کا وکیل بننا بھی صحیح نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ وکیل جو ہے موکل کے کہے بغیر ہی مباح چیزوں کو جمع کرے گا تو اس کا مالک بن جائے گا، اور انسان دوسرے کا نائب ایسی چیز میں بنتا ہے جس کا خود اسے اختیار نہ ہو۔ جب وکیل کو خود اس کا اختیار ہے تو اس کا وکیل بننا ہی صحیح نہیں، جب وکیل بننا صحیح نہیں تو شرکت بھی صحیح نہیں ہے بھائی۔ اور پھر بتلایا تھا کہ اگر دو آدمی مباح چیز کے اندر عقد شرکت کر لیتے ہیں تو پھر اس کا کیا حکم ہے، تو بتلایا کہ شرکت تو فاسد ہے، پھر اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ اس مباح چیز کو جمع کرنے والا کون ہے۔ اگر دونوں نے اس مباح چیز کو جمع کیا ہے تو دونوں اس کے مالک ہوں گے، اگر ایک نے عمل کیا ہے، ایک نے جمع کیا ہے اور دوسرے نے کوئی عمل نہیں کیا، تو ساری مباح چیز اس جمع کرنے والے کی ہے، لیکن اگر جمع تو ایک نے کیا ہے اور دوسرے نے اس کی مدد کی ہے تو پھر وہ چیز جو ہے جمع کرنے والے کی ہے، البتہ اس مدد کرنے والے کو اس کی اجرت دی جائے گی۔ اب کتنی اجرت دی جائے گی؟ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جتنی بھی اجرت بنتی ہو وہ دی جائے گی، چاہے وہ مباح چیز کے برابر ہی اجرت کیوں نہ بن جائے یا اس سے بھی بڑھ جائے تو وہ اجرت دینی پڑے گی۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو اجرت ہے وہ اس مباح چیز کے سمن کے نصف سے زائد نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو مباح چیز جمع کی ہے انہوں نے، اس کے جو سمن بنیں گے اس کے نصف سے زائد اجرت نہیں ہونی چاہیے۔ وجہ یہ کہ اس کے نصف سے زائد جو اجرت بنتی ہے وہ تو دوسرا شریک خود ہی ساقط کر چکا ہے۔ جب دونوں نے عقد شرکت کیا تھا تو یہ طے کیا تھا کہ یہ چیزیں جب ہم جمع کریں گے تو ہم دونوں میں یہ آدھی آدھی ہوگی، معلوم ہے اس چیز کے آدھے سمن پر وہ راضی تھا، تو لہذا اجرت بھی آدھے سمن سے زائد نہیں دی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد صاحب ہدایہ نے بتلایا کہ مثلا دو آدمی جو ہیں وہ آپس میں شرکت کر لیتے ہیں پانی کے لانے پر، ایک کے پاس خچر ہے اور دوسرے کے پاس مشکیزہ ہے، اور دونوں آپس میں عقد کر لیتے ہیں کہ اس مشکیزے کو استعمال کرتے ہوئے اس خچر پر ہم پانی لایا کریں گے اور کمائی کو آپس میں تقسیم کر لیا کریں گے، تو صاحب ہدایہ نے بتلایا یہ شرکت فاسد ہے، کیونکہ یہ پانی کے لانے پر شرکت کی جا رہی ہے اور پانی تو مباح ہے۔ اور نیز इसके अंदर भी जो पानी लाने वाला है वो उस सारी कमाई का मुस्तहिक होगा, और दूसरे का खच्चर या मिशकीसा इस्तेमाल हुआ है तो उसको उसकी उजरतें मिसल दी जाएगी। यानी इस जैसे खच्चर या इस जैसे मिशकीसे के इस्तेमाल की जो उजरत बनती है वो उसको दी जाएगी भाई। और फिर साहिब हिदाय ने यह भी बतलाया कि हर शिरकत फासेदा जो है उसके अंदर नफा माल के बकदर तकसीम किया जाएगा। वैसे तो हमारे नजदीक ये जो नफा है ये अकद की फरा है, लिहाजा कमी बेशी के साथ भी नफा तय कर लें तो ये जायज है, लेकिन शिरकत फासिदा के अंदर ये जो नफा है ये रसूल माल की फरा है, लिहाजा जिसका जितना माल होगा नफे के अंदर भी उसका उतना ही हिस्सा होगा, और बाकी जो उन्होंने कमी बेशी तय की थी वो जब शिरकत फासिद हो गई तो वो मुकर्रर करना भी फासिद हो गया भाई। और साहिब हिदाया ने फिर यह भी बतलाया कि दोनों शरीकों में से अगर कोई मर जाए तो इस सूरत में शिरकत बातिल हो जाती है, क्योंकि शिरकत की बुनियाद वकालत पर है, और जब वकालत खत्म तो शिरकत भी खत्म हो गई। और फिर यह भी बतलाया कि चाहे यह मौत मौत हकीकी हो या मौत हुक्मी हो, मौत हुक्मी आपने पढ़ा था कि मसलन अलआयाजुबिल्ला कोई शख्स मुर्तद हो जाता है और फिर भागकर दारुल हर्ब चला जाता है और फिर काजी के पास मसला जाता है और काजी उसके दारुल हर्ब चले जाने का फैसला कर देता है, तो काजी का यह फैसला उस मुर्तद के लिए मौत हुक्मी के दर्जे में है। यूं समझा जाएगा कि जिस वक्त काजी ने फैसला किया उस वक्त मुर्तद पर मौत आ गई, तो लिहाजा उसके माल में वरासत भी जारी हो जाएगी, और इसी तरह शिरकत थी तो वह शिरकत भी बातिल हो जाएगी। और साहिब हिदाय ने यह भी बतलाया कि जो वकील को वकालत से अलग किया जाता है यानी जो अजल है ये दो किस्म पर है, एक अजल कस्दी है कि अपने इरादे से वकील को माजूल करे, और एक अजल हुक्मी है कि जहां किसी दूसरी चीज के जिम्मन में वकील माजूल हो जाए। तो ये जो अजल कस्दी है जिसमें अपने इरादे से वकील को माजूल किया जाता है इसके अंदर वकील को इलम होना जरूरी है, फिर ही वो माजूल होगा, जबकि अजल हुक्मी जो है उसके अंदर वकील को चाहे इलम हो या इलम ना हो वो हर हाल में माजूल हो जाता है भाई। और फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने शिरकत से मुताल्लिका चंद और मसाइल जिक्र फरमाए जिनका ताल्लुक तिजारत से तो नहीं अलबत्ता शिरकत से है। तो साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि दोनों शरीकों में से किसी एक के लिए भी जायज नहीं है कि दूसरे की जकात अदा करे, इसलिए क्योंकि याकद शिरकत तिजारत के लिए किया जाता है और जकात जो है वह तो तिजारत की जिन्स में से नहीं है, लिहाजा दोनों एक दूसरे की जकात अदा नहीं कर सकते इल्ला यह कि वह एक दूसरे को इजाजत दे दें, जब इजाजत दे दें तो फिर दोनों एक दूसरे की जकात अदा कर सकते हैं। अलबत्ता जब दोनों ने एक दूसरे को इजाजत दे दी और फिर दोनों ने जकात अदा कर दी तो यहां फिर दो सूरतें बनती हैं, या तो दोनों ने ताकुब के तरीके पर जकात अदा की होगी, ताकुब का माना है यके बाद दीगरे होना यानी एक चीज का दूसरी चीज के बाद होना, तो अगर एक ने पहले जकात अदा की और दूसरे ने बाद में जकात अदा की तो पहले ने जो जकात अदा की उससे जकात अदा हो गई और बाद वाले ने जो अदा की उससे तो जकात अदा नहीं हुई, लिहाजा उस पर जमान आएगा इमाम साहिब के नजदीक। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि अगर दूसरे को पहले के जकात अदा करने का इलम ही नहीं था तो फिर दूसरे पर जमान नहीं आएगा भाई। और अगर दोनों ने इकट्ठी जकात अदा की है, दोनों ने इकट्ठी जकात अदा की है या दोनों ने जकात तो आगे पीछे अदा की है, एक ने पहले दूसरे ने बाद में, लेकिन तकदीम और ताखीर का पता नहीं चल रहा कि किसने पहले अदा की है और किसने बाद में, तो इसको भी इकट्ठा ही शुमार किया जाता है। तो लिहाजा अगर दोनों ने इकट्ठे जकात अदा की है तो फिर इस सूरत में दोनों अपने साथी के हिस्से के जामिन होंगे, अपनी जकात तो उसकी अदा हो गई और साथी की तरफ से जो अदा की है वो उसका जामिन होगा, क्योंकि ये जकात ये माले मुश्तरका में से अदा कर रहे हैं तो हर एक दूसरे शरीक के हिस्से का जामिन होगा भाई। और साहिब हिदाया ने ये भी बतलाया कि इसी इख्तिलाफ पर है मामूर भी अदा इस जकात भी, वो शख्स जिसको जकात की अदायगी का हुक्म दिया गया। ये शिरकत के अलावा भाई कोई शख्स अगर दूसरे को वकील बनाता है कि ये पैसे ले लो और जाकर मेरी तरफ से जकात अदा कर दो, और फिर वो जो वकील है वो जकात का माल लेकर चला गया, और इधर मुवक्किल जो है उसके पास कोई फकीर आया उसने वहीं पर उसको जकात अदा कर दी, उधर वकील जो है उसने भी फकीर को वो माल दे दिया, तो क्या इस वकील पर जमान आएगा या जमान नहीं आएगा। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि वकील ने मुवक्किल की मुखालफत की है, मुवक्किल ने तो उसे जकात देने का हुक्म दिया था और वकील ने जो इस माल का फकीर को मालिक बनाया है इससे तो जकात अदा नहीं हुई, क्योंकि जकात तो पहले ही अदा हो चुकी है। जकात तो एक दफा अदा की जाती है, दो दफा अदा नहीं की जाती। लिहाजा वकील ने मुवक्किल की मुखालफत कर दी। और मैंने आपको जाब्ता बतलाया था कि जब वकील मुवक्किल की मुखालफत करे तो उस पर जमान आता है, लिहाजा इमाम साहब के नजदीक इस वकील पर जमान आएगा, चाहे इसको मुवक्किल के जकात अदा करने का इलम हो या इलम न हो। भाई जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि नहीं, वकील ने मुवक्किल की मुखालफत नहीं की, वकील के बस में सिर्फ इतना था कि वो फकीर को इस माल का मालिक बना देता और उसने ये काम पूरा कर दिया। बाकी ये जो फकीर को माल का मालिक बना रहा है इसका जकात होकर वाकई होना यह तो वकील के इख्तियार में नहीं, इसका दारोमदार तो मुवक्किल की नीयत पर है। भाई ये तो वकील के इख्तियार में ही नहीं, तो जब एक चीज वकील के इख्तियार में ही नहीं तो उसका मुतालबा भी वकील से नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा वकील से जकात के अदा करने का मुतालबा भी नहीं, बल्कि सिर्फ फकीर को माल का मालिक बनाने का मुतालबा है और वो तो वकील ने कर दिया, लिहाजा उसकी तरफ से कोई कोताही नहीं तो उस पर जमान भी नहीं आएगा। और साहिबैन फरमाते हैं ये जो मामूर भी अदा इस जकात है, ये शख्स जिसको जकात देने का हुक्म दिया गया ये मामूर भी ज़बह दमिल एहसार की तरह हो गया, यानी वो शख्स जिसको दम एहसार के जिबा का हुक्म दिया जाए। मैंने आपको बतलाया था कि जब कोई शख्स हज पर मसलन जाता है तो उसे एहराम बांधना पड़ता है, और एहराम उन दो कपड़ों का नाम नहीं बल्कि एहराम पाबंदियों वाली उस हालत का नाम है जिसमें इंसान पर बहुत सी पाबंदियां आ जाती हैं। मसलन वो नाखून नहीं काट सकता, बाल नहीं काट सकता, खुशबू नहीं लगा सकता, बीवी के करीब नहीं जा सकता, और इसी तरह अगर मर्द है तो सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकता। तो लिहाजा जब कोई शख्स हज पर जाता है तो उसे एहराम बांधना पड़ता है और एहराम की पाबंदियां उस पर लागू हो जाती हैं। अब इस एहराम से निकलने की दो ही सूरतें हैं, या तो अब ये जाकर हज के अफाल करे और फिर जब हज के अफाल करे तो फिर अपने बाल कटवाकर एहराम से निकल जाएगा, एहराम की पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। और अगर रास्ते में कोई रुकावट आ गई, ये आदमी हज पर नहीं जा सकता, तो फिर एहराम की पाबंदियां वो वैसे नहीं खत्म कर सकता बल्कि उसको हराम के अंदर एक जानवर की कुर्बानी करवाना पड़ेगी, यानी एक दम जिबाह करवाना पड़ेगा। दम का माना खून, मुराद है कुर्बानी, तो एक दम जो है वो जिबा करवाना पड़ेगा वहां हरम के अंदर, और जब वो कुर्बानी हरम में हो जाएगी तो अब इस पर से एहराम की पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। मालूम हुआ एहराम की पाबंदियां शुरू हो जाएं तो उन पाबंदियों से निकलने के और एहराम के खत्म करने की दो ही सूरतें हैं, या तो जाकर हज के अफाल कर ले और उसके बाद सर के बाल कटवाकर हलाल हो जाए यानी एहराम से निकल जाए, और अगर रुकावट आ गई या हज पर नहीं जा सका तो फिर वहां एक कुर्बानी करवा दे, फिर यह एहराम से निकल सकता है। बात समझ में आ गई। तो लिहाजा मसलन एक शख्स हज पर जा रहा था, उसने एहराम बांध लिया, एहराम की पाबंदियां शुरू हो गई और दरमियान में कोई रुकावट आ गई तो यह शख्स मुहसर हो गया। अहसारा युहसिरु इहसार का माना है रोकना और कैद करना, तो यह शख्स भी मुहसर हो गया यानी मुकैद हो गया, अब यह हज पर नहीं जा सकता। तो ये मुहसर जो है फिर किसी को पैगाम भिजवाता है कि मेरी तरफ से मक्का में एक जानवर की कुर्बानी कर देना, मेरी तरफ से हराम में एक जानवर की कुर्बानी कर देना, और इसने किसी को वकील बना दिया। इधर कुछ दिनों के बाद यह रुकावट खत्म हो गई और यह जो मुहसर था यह खुद ही हज करने चला गया और इसने वहां हज के सारे अफाल सर अंजाम दिए और फिर उसके बाद सर के बाल कटवाए और एहराम से निकल गया। जब यह हज के अफाल के जरिए एहराम से निकल गया है तो अब तो दमे एहसार की कोई जरूरत बाकी ना रही, लेकिन इसके वकील ने इसके बावजूद इसकी तरफ से एक कुर्बानी कर दी, तो क्या वकील पर जमान आएगा या नहीं? क्योंकि वकील के जिम्मे तो था दमे एहसार की कुर्बानी करे, और वकील ने जो कुर्बानी की है वो तो दमे एहसार वाली कुर्बानी नहीं, क्योंकि दमे एहसार तो उस शख्स पर आया ही नहीं भाई, क्योंकि वो खुद ही हज करने पहुंच गया। तो वकील की कुर्बानी दमे एहसार होकर वाकई नहीं हुआ, तो क्या वकील पर जमान आएगा या नहीं? तो याद रखो कि वकील को चाहे मुहसर के हज करने का इलम हो या इलम ना हो, दोनों सूरतों में वकील पर जमान नहीं आता। तो साहिबैन फरमाते हैं जैसे मामूर भी ज़बह दमिल एहसार है उस पर जमान नहीं आता, इसी तरह मामूर भी अदा इस ज़कात पर भी जमान नहीं आएगा। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि नहीं, ये मामूर भी अदा इस ज़कात इसने आमिर की यानी मुवक्किल की मुखालफत की है। मुवक्किल ने तो इसे कहा था कि ये माल ले जाओ और मेरी तरफ से ज़कात अदा करो, और वकील ने फकीर को जो माल अदा किया वो तो ज़कात होकर वाकई नहीं हुआ, क्योंकि ज़कात तो मुवक्किल खुद ही अदा कर चुका था। तो लिहाजा वकील ने मुवक्किल की मुखालफत कर दी और लिहाजा अब इस वकील पर जमान आएगा। इमाम साहब फरमाते हैं वजह यह कि जब कोई शख्स ज़कात देता है तो जाहिरी और दुनियावी एतबार से उसके माल में कमी आती है, उसको दुनियावी नुकसान होता है, लेकिन इस दुनियावी नुकसान की वजह से उखरवी नुकसान से वो बच जाता है, क्योंकि अगर उसके जिम्मे वाजिब ज़कात बाकी रहेगी तो आखिरत में उसका मुआखजा होगा भाई। तो जाहिर यही है कि इंसान दुनियावी नुकसान इसीलिए बर्दाश्त करता है ताकि उखरवी नुकसान से वो बच जाए। और यहां पर वकील ने जो माल अदा किया है वो तो ज़कात होकर वाकई नहीं हुआ, लिहाजा इस अदायगी के जरिए उखरवी नुकसान से बचना नहीं पाया गया, यानी मकसूद हासिल नहीं हुआ। जब मकसूद इस अदायगी से हासिल नहीं हुआ तो मालूम हुआ वकील ने मुवक्किल की मुखालफत की है, लिहाजा इस वकील पर जमान आएगा भाई। और नीज मुवक्किल ने जब खुद ज़कात अदा कर दी तो मुवक्किल की इस अदायगी की वजह से वकील खुद ब खुद माजूल हो गया अदाए ज़कात से, वो ज़कात की अदायगी का वकील रहा ही नहीं। तो यहां पर जो वकील जो है माजूल हुआ है वो अज़ल हुक्मी है, मुवक्किल ने उसको कोई साफ लफ्जों में मना नहीं किया कि ज़कात अदा न करना, बल्कि मुवक्किल के फेल की वजह से वो माजूल हुआ है। और मैंने आपको बतलाया था कि जब दूसरी चीज के जिमन में अज़ल आए तो उसको अज़ल हुक्मी कहते हैं भाई, और अज़ल हुक्मी के अंदर वकील को इलम होना जरूरी नहीं। लिहाजा वकील को इस मुवक्किल की अदायगी का चाहे इलम हो या इलम ना हो, हर हाल में उस पर जमान आएगा, क्योंकि यह अज़ल हुक्मी है भाई। और फिर साहिब हिदाया ने साहिबैन के कियास का जवाब भी दिया इमाम साहिब की जानिब से। साहिबैन ने इस मामूर भी अदा इस ज़कात को कियास किया था मामूर भी ज़बह दमिल एहसार पर, और जैसे मामूर भी ज़बह दमिल एहसार पर जमान नहीं आता चाहे वो मुहसर के हज करने के बाद ही क्यों ना उस जानवर को ज़िबा करे, फिर भी इस पर जमान नहीं आता, इसी तरह मामूर भी अदा इस ज़कात जो है उस पर भी समान नहीं आएगा भाई। तो इसके दो जवाब जिक्र किए साहिब हिदाया ने। पहला जवाब इनकारी दिया कि हमें आपकी यह बात तस्लीम ही नहीं है कि मामूर बिज़बह दमिल एहसार जो है उस पर जमान नहीं आएगा जब वो मुहसर के हज के बाद उस जानवर को जिबा करे, तो उस मामूर बिज़बह दमिल एहसार पर जमान नहीं आएगा, हमें आपकी यह बात ही तस्लीम नहीं है, बल्कि इस मामूर बिज़बह दमिल एहसार पर भी इमाम साहब के नजदीक जमान आएगा। तो अगर आप मामूर भी अदाए ज़कात को मामूर भी ज़बह दमिल एहसार पर कियास भी कर लें फिर भी आपका दावा साबित नहीं होता, क्योंकि दोनों के अंदर इमाम साहब इख्तिलाफ फरमाते हैं। और दूसरा जवाब तस्लीमी दिया था कि अगर आपकी बात तस्लीम कर ली जाए कि मामूर भी ज़बह दमिल एहसार जो है उस पर जमान नहीं आता और मामूर भी अदाए ज़कात पर जमान आता है, तो भी दोनों में फर्क है। जब दोनों में फर्क है तो आप एक को दूसरे पर कियास नहीं कर सकते। और फर्क यह है कि मामूर भी अदाए ज़कात के मसले में वहां तो ज़कात की अदायगी हर हाल में वाजिब हो चुकी है, वो ज़कात अदा करनी ही करनी है, लिहाजा वहां अदायगी के जरिए मकसूद जो है वाजिब को साकित करना है, ज़कात वाजिब हो चुकी है तो वकील की अदायगी के जरिए वाजिब को साकित करना ही मकसूद है, और जब यह मकसूद ना पाया गया तो वकील पर जमान आएगा। जबकि मामूर भी ज़बह दमिल एहसार जो है उस पर तो अभी वो दम यानी वो कुर्बानी अभी वाजिब ही नहीं हुई, क्योंकि अगर ये शख्स थोड़ा इंतजार कर ले और वो रुकावट दूर हो जाए तो फिर ये खुद भी हज पर जा सकता है, और जब ये खुद भी हज पर जा सकता है मालूम हुआ इस पर अभी एहसार का दम वाजिब ही नहीं हुआ, तो जकात के मसले में जकात कतई तौर पर वाजिब थी और महसूर के मसले में दम अभी कतई तौर पर वाजिब नहीं, तो दोनों में फर्क है। लिहाजा अदाए जकात में तो वाजिब को साकित करना मकसूद होगा, लेकिन कुर्बानी करने के अंदर तो वाजिब को साकित करना मकसूद नहीं, क्योंकि अभी कुर्बानी वाजिब ही नहीं हुई, तो दोनों में फर्क आ गया। लिहाजा आप एक को दूसरे पर कयास नहीं कर सकते। और फिर साहिब हिदाय ने मसला जिक्र फरमाया कि दो शरीक हैं, उन्होंने आपस में अक़्द मुफावजा किया हुआ है, और आप पढ़ चुके हैं कि अक़्द मुफावजा के अंदर दोनों शरीक माल के अंदर भी बराबर होते हैं, तसर्रुफ के अंदर भी बराबर होते हैं, दीन के अंदर भी बराबर होते हैं, और दोनों में से जो भी कोई चीज खरीदता है तो वह इश्तराक के तरीके पर होती है, वह दोनों में मुश्तरका होती है, सिवाय अपने घर वालों के गल्ले के और कपड़ों के, कि ये चीजें जो हैं शिरकत से मुस्तस्ना है। अपने घर वालों के लिए गल्ला या कपड़े खरीदेगा तो ये उसी शरीक का होगा जिसने इनको खरीदा है। अलबत्ता माल तो दोनों का मुश्तरका है, क्योंकि सारे माल में इन्होंने शिरकत की हुई है, तो लिहाजा जब ये माल मुश्तरका से ये समन अदा करेगा तो दूसरा शरीक इस पर निस्व समन के अंदर रुजू करेगा कि मेरे हिस्से का माल भी तुमने अदा किया है, लिहाजा अब मेरे हिस्से का माल मेरे हवाले करो। बात समझ में आ गई। तो सूरत यह है, दो शरीकों ने अक़्द मुफावजा किया हुआ है, अब दोनों में से एक शरीक दूसरे को इजाजत देता है कि तुम कोई बांदी खरीद कर उसके साथ वती कर सकते हो, तो लिहाजा उस दूसरे शरीक ने माले शिरकत से एक बांदी खरीदी और उसके साथ सोहबत कर ली, तो इमाम साहब फरमाते हैं यह बांदी इसी शरीक की हो गई बगैर किसी इवज के, यानी अब इसका साथी इस पर इस बांदी के निस्फ समन में रुजू नहीं कर सकता। जबकि साहिबान फरमाते हैं नहीं, बांदी इसकी मिल्कियत है और इसकी कीमत और समन जो है वह इसने माले मुश्तरका से अदा किए हैं, लिहाजा इसका शरीक जो है निस्फ समन के अंदर इस पर रुजू करेगा, क्योंकि बांदी का यह अकेला मालिक है और इसने माले मुश्तरका से अदायगी की है, और माले मुश्तरका में से जब भी अपनी खास मिल्कियत के लिए कोई अदायगी करता है तो उसका शरीक उस पर निसफ के अंदर रुजू करता है। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि जब एक शरीक ने दूसरे को बांदी खरीदने और उसके साथ वती करने की इजाजत दे दी, तो फिर जब उस शरीक ने बांदी को खरीदा तो खरीदते वक्त यह बांदी मुश्तरका है, इसलिए क्योंकि दोनों के दरमियान अक़्दे मुफावजा हुआ है और अक़्दे मुफावजा तकाजा करता है हर खरीदारी में शिरकत का, और दोनों अक़्दे मुफावजा के इस मुक्तजा को नहीं बदल सकते, भाई इनको उसको बदलने का इख्तियार नहीं है, तो लिहाजा ये बांदी मुश्तरका हुई दोनों के दरमियान, और फिर उस खरीदने के बाद वहां ज़िम्नन हिबा साबित हो जाएगा क्योंकि दूसरे शरीक ने इजाजत दी थी, दूसरे शरीक ने इजाजत दी थी, तो गोया दूसरे शरीक ने यूं कहा था कि एक मुश्तरका बांदी माले मुश्तरका में से खरीद लो, फिर मेरा जो हिस्सा होगा वो मेरी तरफ से तुम्हें हिबा हो जाएगा और फिर तुम उस बांदी से सोहबत कर लेना। तो लिहाजा यहां पर भी इमाम साहब फरमाते हैं अव्वलन जब बांदी खरीदी तो वो दोनों के दरमियान मुश्तरका थी, और फिर दूसरे शरीक की तरफ से इजाजत के जिमन में हिबा आ गया तो ये पूरी बांदी का मालिक बन गया, लिहाजा अब इसके लिए सोहबत जायज है। और यहां पर हिबा के अलावा और कोई सूरत नहीं है पूरी बांदी का मालिक होने की, इसलिए क्योंकि अगर दूसरा शरीक इसको अपना हिस्सा हिबा नहीं करता बल्कि अपना हिस्सा इसको बेचता है, अपना निसफ हिस्सा जो बांदी के अंदर है वो इसको बेचता है, तो जब ये दूसरे शरीक के निसफ हिस्से को खरीदेगा तो हर खरीदी हुई चीज में दोनों का इश्तराक होता है, तो फिर भी इस बांदी के अंदर दूसरे शरीक का हिस्सा होगा, तो ये पूरी बांदी का मालिक नहीं बनेगा। जब पूरी बांदी का मालिक नहीं बनेगा तो इसके लिए सोहबत भी जायज नहीं होगी, लिहाजा यहां सोहबत के जायज होने के लिए पूरी बांदी का मालिक होना जरूरी है, और पूरी बांदी का मालिक होने के लिए दूसरे शरीक की तरफ से हिबा जरूरी है। भाई बात समझ में आ गई। और जब दूसरे शरीक की तरफ से हिबा मान लिया गया तो दूसरा शरीक अब निस्फ समन में इस पर रुजू भी नहीं कर सकता क्योंकि उसने अपना हिस्सा इसे हिबा कर दिया है। बात समझ में आ गई। साहिबैन ने इस बांदी के मसले को कयास किया था अपने घर वालों के गल्ले और कपड़े पर, तो उसका जवाब दिया कि नहीं, बांदी को आप उन कपड़ों और गल्ले पर कयास नहीं कर सकते क्योंकि गल्ला और कपड़े जो हैं वो इंसान की बुनियादी जरूरियात में से है, हर इंसान खाने पीने और कपड़ों का मोहताज है, लिहाजा अपने घर वालों का गल्ला और अपने घर वालों के जो कपड़े हैं वो इस अक़्द से मुस्तस्ना है, यानी उनमें दोनों की शिरकत शिरकत नहीं होगी। जो शरीक अपने घर वालों के लिए गल्ला या कपड़े खरीदेगा तो वह इश्तराक के तरीके पर नहीं, बल्कि वह सारे गल्ले का वही मालिक है, सारे कपड़ों का वही मालिक है, और अदायगी तो यह माले मुश्तरका से कर रहा है। तो चीज खरीदी अपने और घर वालों के लिए और अदायगी माले मुश्तरका से की, तो इसलिए दूसरा शरीक निसफ के अंदर उस पर रुजू करता है। जबकि बांदी में तो ऐसी जरूरत नहीं है कि इसको मुस्तस्ना करार दिया जाए, लिहाजा जब बांदी खरीदी तो वो बांदी मुश्तरका थी, और बांदी के जब समन अदा किए तो मुश्तरका चीज के समन अदा किए, और फिर दूसरे ने अपना हिस्सा हिबा कर दिया तो दूसरा इस पर रुजू नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई। और फिर यह बांदी का जो पुराना मालिक है जिससे इस शरीक ने बांदी खरीदी है वह समन के सिलसिले में दोनों पर रुजू कर सकता है, इसलिए क्योंकि बांदी का खरीदना यह तिजारत के कामों में से है भाई, और तिजारत की वजह से जो भी दैन दूसरे पर लाजिम होता है वो दैन दोनों पर लाजिम होता है, दोनों से मुतालबा हो सकता है। तो यहां पर भी इस बांदी के समन का मुतालबा दोनों शरीकों से किया जा सकता है। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। किताबुल वक्फ। قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يزول ملك الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته فيقول إذا مت فقد وقفت داري على كذا. كتاب الوقف بھئی اب صاحب ہدایہ وقف کے مسائل ذکر فرمائیں گے اس کتاب الوقف کے اندر۔ वक्फ इसे कहते हैं कि कोई शख्स जो है अपनी जमीन, मसलन अपना मकान है या दुकान है या फैक्ट्री है या कोई बाग है या इसी तरह काश्त वाली कोई जमीन है, उसे अल्लाह के लिए वक्फ कर दे कि ये जमीन मैंने अल्लाह के लिए वक्फ कर दी है और आज के बाद इसकी आमदनी फुकरा पर खर्च की जाएगी, तो याद रखो इसे वक्फ कहते हैं और यह बड़े अजर वाला काम है, यह सदका जारिया है। जब तक यह चीज रहेगी और जब तक फुकरा इसे नफा उठाते रहेंगे उस वक्फ करने वाले को उसका अजर मिलता रहेगा भाई। और फिर इसमें याद रखना वक्फ के अंदर वक्फ करने वाले का आजाद, आकिल और बालिग होना जरूरी है। जो कोई शख्स आजाद है, आकिल और बालिग है वो अपनी जायदाद वगैरह वक्फ कर सकता है। इसमें इस्लाम की शर्त भी नहीं है, अगर कोई जिम्मी भी अपनी जायदाद वक्फ करता है तो वो वक्फ हो जाएगी भाई। अलबत्ता इसमें यह याद रखना कि वक्फ के अंदर तालीक सही नहीं है, यानी वक्फ को किसी शर्त के साथ मुअल्लक करना सही नहीं है भाई। मसलन कोई आदमी बीमार है तो वो वक्फ को मुअल्लक कर देता है कि अगर मैं इस बीमारी से सेहतयाब हो गया तो मेरी तरफ से ये मेरी फला जमीन वक्फ है, ये तो वो वक्फ को शर्त के साथ मुअल्लक कर रहा है। याद रखो वक्फ को शर्त के साथ मुअल्लक करना सही नहीं है भाई। अलबत्ता इसके अंदर शर्त लगाना सही है, मसलन मालिक शर्त लगा देता है कि मेरा जो फला बाग है उसे मैं वक्फ करता हूं इस शर्त पर कि तमाम जिंदगी इसकी आमदनी मैं इस्तेमाल करूंगा और मेरे मरने के बाद इसकी आमदनी फुकरा पर खर्च की जाए, तो सारे बाग की आमदनी की शर्त अपने लिए लगाना या निस्फे आमदनी की अपने लिए शर्त लगाना, तो इस तरह की कोई शर्त लगाना भी वक्फ में सही है भाई। तो इसमें देखो जिंदगी में वो खुद भी उससे फायदा उठाता रहेगा, उसकी जरूरियात भी पूरी होती रहेंगी और उसके मरने के बाद फुकारा को उसकी आमदनी मिलेगी, तो ये उसके लिए अजर व सवाब का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। और फिर ये भी याद रखना जब कोई शख्स अपनी जायदाद वगैरह या अपना बाग जो है उसको वक्फ कर दे तो फिर अब उसमें और कोई तसर्रुफ उसके लिए जायज नहीं भाई, न उसको बेचा जा सकता है, न किसी को हिबा किया जा सकता है, और नीज जिस मसरफ के लिए मालिक ने वक्फ किया है उसी मसरफ के अंदर इसकी आमदनी खर्च की जाएगी, किसी और मसरफ में खर्च करना जायज नहीं। मसलन मालिक ने जमीन को वक्फ किया कि मेरी ये जो जमीन है इसकी आमदनी दीन के तलबा पर खर्च की जाए, तो जो दीन पढ़ने वाले हैं उन्हीं पर उस आमदनी को खर्च किया जाएगा, उसके अलावा और फुकरा पर खर्च करना जायज नहीं है। तो जब एक दफा एक चीज वक्फ कर दी जाए तो फिर इसमें कोई तसारुफ करना जायज नहीं है भाई। जी देखिए भाई किताब पर कहते हैं किताबुल वक्फी, ये वक्फ की किताब है। قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی لا يزول ملك الواقف عن الوقف। भाई इबारत पर नजर है भाई, भाई ये जो काला अबू हनीफा रहिमहुल्ला आया ये शरा का हिस्सा है और आगे जो कौल शुरू हो रहा है ला यज़ूलु मिल्कुल वाकिफी अनिल वक्फी ये मतन है, ये कुदूरी की इबारत है। तो यहां से लेकर आगे तकरीबन दो सत्रों तक ये कुदूरी की इबारत है भाई। और इस इबारत के अंदर साहिब कुदूरी ने शुरू के अंदर इमाम साहिब का कौल जिक्र फरमाया, अलबत्ता इमाम साहिब का नाम नहीं लिया और आगे इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का नाम भी जिक्र किया। तो साहिब हिदायत ने वजाहत के लिए शुरू में काला अबू हनीफा रहमतुल्लाह का लफ्ज बढ़ा दिया कि यह जो मतन में पहली बात आ रही है यह इमाम साहिब का कौल है। तो कहते हैं काला अबू हनीफा रहमतुल्लाह। भाई यहां एक और बात याद रखें, यहां इमाम साहिब और साहिबैन का इख्तिलाफ जिक्र होगा, वक्फ के बारे में इमाम साहेब और साहिबैन का इख्तिलाफ जिक्र होगा। तो बाज फुकहा फरमाते हैं यह इख्तिलाफ जवाज और अदम जवाज का है, इमाम साहेब के नजदीक वक्फ जायज ही नहीं और साहिबैन के नजदीक वक्फ जायज है। लेकिन साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि इमाम साहेब का जो साहिबैन से इख्तिलाफ है वो वक्त के जवाज और अदम जवाज का नहीं है बल्कि लुजूम और अदम लुजूम का इख्तिलाफ है। इमाम साहब के नजदीक भी वक्फ जायज है क्योंकि वक्फ तो अहादीस मशहूरा से साबित है और सहाबा के इजमा से साबित है और इमाम साहब इसका इनकार कैसे कर सकते हैं। तो इमाम साहब भी वक्फ के जवाज के कायल हैं, अलबत्ता वक्फ लाजिम हो जाता है या नहीं इसमें इमाम साहब साहिबैन से इख्तिलाफ करते हैं। इमाम साहब के नजदीक कोई शख्स अपना बाग मसलन फुकरा के लिए वक्फ कर देता है कि इस बाग की आमदनी आज के बाद फुकरा पर खर्च की जाए, तो इमाम साहब के नजदीक यह कहने से वक्फ लाजिम नहीं हुआ, यह कहने से वक्फ लाजिम नहीं हुआ। लाजिम न होने का माना यह है कि यह शख्स इसमें रुजू कर सकता है, दो चार साल तक वह फुकरा पर खर्च करता रहा और फिर उसके बाद उसने कहा मैं रुजू करता हूं और वह बाग इसने फिर वापस ले लिया और उसकी आमदनी अब वो खुद इस्तेमाल करने लगा। तो इमाम साहेब और साहिबैन का जो इख्तिलाफ है वह जवाज और आदम जवाज का नहीं है बल्कि लुजूम और आदम लुजूम का है। इमाम साहब के नजदीक वक्फ करने से लाजिम नहीं होता जबकि साहिबैन के नजदीक वक्फ करने से वो वक्फ लाजिम हो जाता है, अब उसमें रुजू नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं काल अबू हनीफा रहिमहुल्लाह, इमाम आजम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं ला यज़ूलु मिल्कुल वाकिफी अनिल वक्फी के वाकिफ की मिल्कियत वक्फ से खत्म नहीं होती। कोई शख्स अपना बाग है या मकान है या दुकान है वो अगर वो फुकारा के लिए वक्फ करता है तो वक्फ करने से वो चीज मालिक की मिल्कियत से नहीं निकलती, वही शख्स अभी भी इसका मालिक है भाई। तो इमाम साहब फरमाते हैं ला यज़ूल मिल्कुल वाकिफी अनिल वक्फी के वक्फ करने वाले की मिल्कियत वक्फ से खत्म नहीं होती। मिल्कियत खत्म नहीं होती तो वो जो वाकिफ है वो जो वक्फ करने वाला है वो इस बाग को जो उसने वक्फ किया है इसके अंदर अभी भी वो तसारुफ कर सकता है, वो इसके अंदर रुजू करना चाहे तो रुजू कर सकता है, वो इसको बेचना चाहे तो बेच सकता है, वो किसी को तोहफे के तौर पर देना चाहे तो दे सकता है, क्योंकि इमाम साहब के नजदीक वक्फ करने से वक्फ लाजिम नहीं होता और उस शख्स की मिल्कियत से नहीं निकलता। अगर उस शख्स की मिल्कियत से निकल जाए फिर तो वक्फ लाजिम हो गया, अब तो रुजू नहीं हो सकता, अब तो वो उसको बेच नहीं सकता, किसी को तोहफा नहीं दे सकता। लेकिन इमाम साहब फरमाते हैं नहीं, वक्फ करने से भी वक्फ करने वाले की मिल्कियत उस चीज पर से खत्म नहीं होती। तो इमाम साहब फरमाते हैं ला यज़ूल मिल्कुल वाकिफी अनिल वक्फी के वक्फ करने वाले की मिल्कियत वक्फ से खत्म नहीं होती इल्ला अन यहकुम बिहिल हाकिम, मगर यह कि हाकिम उसका फैसला कर दे औ युअल्लिकहु बिमौतिही, या ये वक्फ करने वाला उसको अपनी मौत के साथ मुअल्लक कर दे। इमाम साहब फरमाते हैं दो सूरतों में वक्फ जो है वो वाकिफ की मिल्कियत से निकल जाता है, एक तो यह कि हाकिम उसका फैसला कर दे, या दूसरी सूरत यह है कि वाकिफ उसको अपनी मौत के साथ मुअल्लक कर दे कि मेरे मरने के बाद मेरा यह जो बाग है यह फुकरा के लिए वक्फ है भाई। मसलन पहली सूरत कि हाकिम उसका फैसला करता है, सूरत ये एक आदमी ने अपना बाग वक्फ कर दिया और किसी को उसका निगरान बना दिया कि मेरा यह बाग वक्फ है, तुम इसके निगरान हो और जिम्मेदार हो, आज के बाद इस बाग का तुमने ख्याल रखना है और इसकी आमदनी तुमने फुकरा पर खर्च करनी है। और फिर दो चार साल गुजरे और फिर वक्फ करने वाला कहता है नहीं भाई अब यह बाग वापस मेरे हवाले कर दो, मैं अपने वक्फ में रुजू करता हूं। तो वो जो मुतवल्ली था उसने वक्फ वापस करने से इनकार कर दिया, वो उस वाकिफ को काजी के पास ले गया और काजी ने फैसला कर दिया कि तुमने बाग वक्फ किया है लिहाजा अब ये वक्फ रहेगा, तुम इसमें रुजू नहीं कर सकते। तो जब काजी फैसला कर देगा तो याद रखो अब वक्फ लाजिम हो गया, अब वक्फ लाजिम हो गया। लाजिम होने का क्या माना? अब रुजू नहीं हो सकता, तो अब वक्फ लाजिम हो गया और नीज अब वक्फ जो है उस वाकिफ की मिल्कियत से निकल गया, अब वो इसका मालिक ही ना रहा, अब वो इसमें कोई तसर्रुफ नहीं कर सकता। तो इमाम साहब के नजदीक वक्फ जो है वाकिफ की मिल्कियत से नहीं निकलता इल्ला यह कि हाकिम यानी काजी उसका फैसला कर दे, या वाकिफ उस वक्फ को अपनी मौत के साथ मुअल्लक कर दे कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा यह जो बाग है यह वक्फ है, इसकी आमदनी फुकरा पर खर्च करना। तो इस सूरत के अंदर भी यह वसीयत के दर्जे में हो गया और वसीयत सुलुस माल में नाफिज होती है, लिहाजा सुलुस माल के अंदर यह वसीयत नाफिज कर दी जाएगी और यह बाग जो है यह फुकरा के लिए वक्फ हो जाएगा और उस वाकिफ की मिल्कियत से निकल जाएगा। तवज्जो है, जरा फिर इबारत देख लीजिए। इमाम साहब फरमाते हैं ला यजूलु मिल्कुल वाकिफ अनिल वक्फी, कि वाकिफ की मिल्कियत वक्फ से खत्म नहीं होती इल्ला अन यहकुम बिहिल हाकिम, मगर यह कि काजी उसका फैसला कर दे अव युअल्लिकहु बिमौतिही, या वाकिफ उसको अपनी मौत के साथ मुअल्लक कर दे। हासिल कलाम क्या इबारत पे नजर है? साहिब कुदूरी फरमा रहे हैं कि इमाम साहिब के नजदीक वाकिफ की मिल्कियत वक्फ से सिर्फ दो सूरतों में खत्म होती है, एक तो यह कि काजी उसका फैसला कर दे और दूसरी यह कि वो वाकिफ उस वक्फ को अपनी मौत के साथ मुअल्लक कर दे। लेकिन साहिब हिदायत आगे चलकर आपको बताएंगे कि हाकिम अगर फैसला कर देता है फिर तो वक्फ वाकिफ की मिल्कियत से निकल जाता है, और अगर वाकिफ ने इस वक्फ को अपनी मौत के साथ मुअल्लक किया है तो फिर सही कौल यह है कि यह वक्फ लाजिम हो जाएगा, वाकिफ की मिल्कियत से नहीं निकलेगा, अलबत्ता लाजिम हो जाएगा, इसमें रुजू नहीं हो सकता जी। तो मतन के अंदर क्या जिक्र था कि इमाम साहिब के नजदीक वक्फ दो सूरतों में वाकिफ की मिल्कियत से निकल जाता है, लेकिन साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि मौत के साथ जब मुअल्लक करे तो उस सूरत में वक्फ जो है वाकिफ की मिल्कियत से नहीं निकलता, सिर्फ लाजिम हो जाता है, यानी अब उसमें रुजू नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं इल्ला अन यहकुम बिहिल हाकिम, मगर यह कि हाकिम उसका फैसला कर दे अव युअल्लिकहु बिमौतिही, या वाकिफ उसको अपनी मौत के साथ मुअल्लक कर दे। फयकूला, बस वो यूं कहे, फयकूला इसको मंसूब पढ़े भाई, पीछे आया था इल्ला अन यहकुम बिहिल हाकिम, यहां यहकुमा पर अन दाखिल है और इसी पर आगे आतफ है, अव युअल्लिकहु बिमौतिही यह भी मंसूब है, और फयकूला इसका भी उसी पर आतफ है तो यह भी मंसूब है, तो वो अपनी मौत के साथ उसको मुअल्लक करता है। फयकूला तो कहता है इदा मुत्तु फकद वकफ्तु दारी अला कदा, जब मैं मर जाऊं तो मेरा घर जो है वो इस पर वक्फ है, कोई जिक्र कर देता है आगे के फकीरों के लिए या तलबा के लिए मेरा घर वक्फ है भाई। यहां तक तो इमाम साहब की बात थी, आगे कहते हैं वकाल अबू यूसुफ रहमहुल्लाह ताला यजूलु मिल्कुहु बिमुजर्रदिल कौली, इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि वाकिफ की मिल्कियत खत्म हो जाती है बिमुजर्रदिल कौली, सिर्फ उसके कहने से ही, जब कोई शख्स यह कह दे मेरा यह बाग अल्लाह के रास्ते में वक्फ है, इसकी आमदनी फुकरा पर खर्च की जाए, तो सिर्फ यह कहने से ही यह बाग उस वाकिफ की मिल्कियत से निकल गया, यह बाग उस वाकिफ की मिल्कियत से निकल गया। यह मजहब है इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह का, जबकि इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि सिर्फ कहने से वो जायदाद उस वाकिफ की मिल्कियत से नहीं निकलेगी, बल्कि किसी दूसरे के सुपुर्द करना भी जरूरी है कि किसी को निगरान मुकरर करे और उसके हवाले कर दे वो जमीन ताकि उसके कब्जे में चली जाए। जैसे भाई हिबा किसी को किया जाता है तो सिर्फ कहने से हिबा नहीं होता, बल्कि जब दूसरा इस हिबा पर कब्जा कर लेगा तो फिर वो इसका मालिक बनेगा। इसी तरह यहां पर भी इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब कोई शख्स अपना बाग वक्फ करना चाहता है तो जब तक किसी निगरान के कब्जे में ये बाग नहीं दे देता उस वक्त तक ये बाग इस शख्स की मिल्कियत से नहीं निकलेगा। हां, जब उस मुतवल्ली के कब्जे में यह बाग दे देगा तो फिर इस वाकिफ की मिल्कियत से यह बाग निकल जाएगा। भाई तो कहते हैं वकाल अबू यूसुफ रहमहुल्लाह ताला यजूलु मिल्कुहु बिमुजर्रदिल कौली, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि वाकिफ की मिल्कियत सिर्फ उसके कहने से ही खत्म हो जाएगी। वकाल मोहम्मद रहमहुल्लाह, और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं ला यजूलु, के वाकिफ की मिल्कियत खत्म नहीं होगी हत्ता यजअला लिल वक्फ वलियन, यहां तक कि वो इस वक्फ के लिए कोई वली मुकर्रर कर दे। व युसल्लिमहु इलैही, और ये फिर उसके हवाले कर दे। इसमें किसी मुतवल्ली का कब्जा जरूरी है, किसी को निगरान और जिम्मेदार बनाया जाए और उसके कब्जे में यह बाग दे दिया जाए, फिर ही यह वक्फ उस वाकिफ की मिल्कियत से निकलेगा। भाई तो हासिल कलाम क्या, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक सिर्फ जुबान से कहने से ही वक्फ हो जाएगा और वाकिफ की मिल्कियत से निकल जाएगा और यह वक्फ लाजिम हो गया, अब इसमें रुजू नहीं हो सकता। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक यह सिर्फ जुबान से कहने से वक्फ लाजिम नहीं होगा और उस वाकिफ की मिल्कियत से नहीं निकलेगा, बल्कि जब यह वक्फ मुतवल्ली के हवाले कर दे, उसके कब्जे में दे दे, तो फिर यह वक्फ लाजिम हो जाएगा और वाकिफ की मिल्कियत से निकल जाएगा। जबकि इमाम साहब के नजदीक वक्फ लाजिम होता ही नहीं सिवाय दो सूरतों के, या तो हाकिम उसका फैसला कर दे और या वाकिफ उसको अपनी मौत के साथ मुअल्लक कर दे, और जब अपनी मौत के साथ भी मुअल्लक करेगा तो यह वसीयत के दर्जे में हुआ, लिहाजा सिर्फ सुलुस में यह नाफिज होगा। बात समझ में आ गई। आगे देखिए भाई, قال رضي الله تعالى عنه, इस قال से मुराद साहिब हिदाया है भाई। قال رضي الله تعالى عنه, साहिब हिदाया फरमाते हैं الوقف لغتن, के वक्फ का लफ्ज जो है लुगतन जुबान के एतबार से, यानी अरबी जुबान के एतबार से, हुआ الحبس, वो रोकना है, यानी हब्स का अरबी जुबान में माना रोकना है, किसी चीज को रोक लेना। तो कहते हैं अल वक्फ लुगतन हुवल हब्सु, के वक्फ जो है वह अरबी जुबान के एतबार से रोकना है। यकूलु, आपकी किताब में भी यकूलु है भाई, यहां तकूलु होना चाहिए और यह ज्यादा मुनासिब है, और हिदायत के बाद नुस्खों में तकूलु है, इसलिए क्योंकि यकूलु गायब का सिगा है और इसके अंदर गायब की जमीर है और उसके लिए पीछे मर्जह चाहिए और पीछे तो कोई मर्जह गुजरा नहीं, ले जबकि तकूलू कहें तो फिर इसके अंदर मुखातब की जमीर आ जाएगी, उसके लिए किसी मर्जह की जरूरत नहीं भाई। तो तकूलू आप कहते हैं, साहिब हिदाया वजाहत फरमा रहे हैं कि वक्फ का माना रोकने के हैं, चुनांचे अरबी में कहते हैं कोई शख्स अपनी सवारी रोक ले तो कहता है वकफ तु दाबता, मैंने अपनी सवारी रोक ली, या कहता है अवकफ तो दाबता, मैंने अपनी सवारी रोक ली। तो मुजर्रद से कहें या मजीदफी से कहें माना एक ही है, तो वकफा और अवकफा का एक ही माना है भाई। तो कहते हैं तकूलू आप कहते हैं वकफ तो दाबता, याद रखो दाबा जमीन पर चलने वाले हर जानदार के लिए वजह है, लेकिन अब यह इस्तेमाल जो है सवारी के जानवरों के लिए होता है, यानी घोड़ा गधा और खच्चर जो है इनको दाबा कहा जाता है। तो एक शख्स मसलन कहता है वकफ तो दाबता, या ये कहता है अवकफ तो दाबता, तो दोनों का एक ही माना है भाई। तो कहते हैं तकूल वकफ तो दाबता व अवकफ तो हा बिमानन, आप वकफ तो दाबा या अवकफ तो दाबा कहते हैं तो बिमानन, ये एक ही माना में है, दोनों का एक ही माना है भाई। ये तो लुगवी माना बयान किया, वक्फ का माना है रोकना। शरीयत में किसे कहते हैं तो दो तारीफें करेंगे, एक तारीफ वो है जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं और एक तारीफ वो है जो साहिबैन फरमाते हैं। तो कहते हैं वह हुआ फिशर इंद अबी हनीफा रहमहुल्ला, और शरीयत में वक्फ जो है इमाम साहिब के नजदीक हबसुल आईनी, किसी मुअय्यन चीज को रोकना, अला मिल्किल वाकिफी, वक्फ कर देने वाले की मिल्कियत पर। इमाम साहब के नजदीक वक्फ के अंदर वाकिफ की मिल्कियत खत्म नहीं होती, वो इसमें रुजू भी कर सकता है, वो इसको बेच भी सकता है और इसको हिबा भी कर सकता है। तो इमाम साहब के नजदीक वक्फ जो है हबसुल आईनी अला मिल्किल वाकिफी, वो किसी मुअय्यन चीज को रोकना है वक्फ करने वाले की मिल्कियत पर, व तसद्दुकु बिल मनफाती और उसके नफे को सदका कर देना। किसी चीज को वाकिफ की मिल्कियत पर रोकना कि वो उसका मालिक है और उसके नफे को सदका कर देना कि इसके जो मुनाफे हैं, इसकी जो आमदनियां हैं वो फुकरा पर खर्च की जाएं भाई। और इमाम साहब फरमाते हैं ये आरियत के दर्जे में है, ये आरियत के दर्जे में है। जैसे आरियत के अंदर आरियत देने वाला ही मालिक होता है, दूसरे को सिर्फ मुनाफे का मालिक बनाया जाता है। आरियत भाई मैंने बतलाया था, आरियत कहते हैं किसी को कोई चीज इस्तेमाल के लिए देना। जैसे घरों में मेहमान आ जाए तो हमसायों से कभी बर्तन मंगवा लिए जाते हैं इस्तेमाल के लिए और फिर वापस कर दिए जाते हैं। या जैसे आपके पास गाड़ी है, आपका कोई साथी आपसे इस्तेमाल के लिए गाड़ी ले जाता है और फिर दो दिन के बाद आपको वापस कर देता है। तो ये जो इस्तेमाल के लिए किसी को कोई चीज दी जाए बगैर इवज के, इसको आरियत कहते हैं भाई। और आरियत के अंदर देखो मालिक वही पुराना शख्स है, उसने सिर्फ मुनाफे का मालिक दूसरे को बनाया है, उस चीज की जात का मालिक दूसरे को नहीं बनाया। आपका साथी आपसे गाड़ी ले गया तो आपने उसे गाड़ी का मालिक नहीं बनाया बल्कि गाड़ी के मुनाफे का मालिक बनाया है दो दिन के लिए भाई। बात समझ में आ गई। तो इमाम साहब फरमाते हैं वक्फ भी इसी तरह है, वक्फ के अंदर मालिक वही वाकिफ होता है, अलबत्ता वो मुनाफे जो है उनको वो सदका कर देता है भाई। फिर तर्जमा देख लीजिए कि शरीयत के अंदर इमाम साहब के नजदीक वक्फ जो है हबसुल आईनी अला मिल्किल वाकिफी, वो किसी मुअय्यन चीज को रोकना वाकिफ की मिल्कियत पर, व तसद्दुकु बिल मनफाती और उसके नफे को सदका कर देना, बिमंजिलतिल आरियती आरियत के दर्जे में, सुम्मा कीला फिर कहा गया है अल मनफातु मादूमतुन। यहां से वही बात जिक्र कर रहे हैं जो मैंने शुरू में आपको बतलाई। मैंने बतलाया कि बास फुकहा फरमाते हैं कि जो इमाम साहब और साहिबैन का वक्फ के बारे में इख्तिलाफ है, ये जवाज और अदम जवाज का इख्तिलाफ है। इमाम साहब के नजदीक वक्फ जायज ही नहीं और साहिबैन के नजदीक वक्फ जायज है, ये बास फुकहा फरमाते हैं। लेकिन साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि नहीं, ज्यादा सही बात यह है कि इमाम साहब भी वक्फ के जवाज के कायल हैं और यहां जो इमाम साहब और साहिबैन में इख्तिलाफ है वह सिर्फ इस वक्फ के लुजूम और अदम लुजूम का इख्तिलाफ है। तो वही बात बयान कर रहे हैं, कहते हैं सुम्म कीला फिर कहा गया है अल मनफातु मादूमतुन कि नफा तो मादूम है, फतसद्दुकु बिल मादूमी ला यसिहु लिहाजा मादूम चीज को सदका करना यह तो सही नहीं है, फला यजूजुल वक्फ असलन इंदहु लिहाजा वक्फ सिरे से जायज ही नहीं है इमाम साहिब के नजदीक। इमाम साहब के नजदीक वक्फ सिरे से जायज ही नहीं, इसलिए क्योंकि वक्फ के अंदर मुनाफे जो है उनका सदका किया जाता है। चीज का मालिक तो वही वाकिफ है, उस बाग और जायदाद का मालिक तो वही वाकिफ है, सिर्फ उसने मुनाफे सदका किए हैं और मुनाफे जो है वो तो मादूम है, मुनाफे का कोई अलग वजूद नहीं है। मसलन देखो कोई शख्स अपना मकान किसी को किराए पर देता है तो वो शख्स दूसरे को मकान का नहीं मालिक बना रहा बल्कि जो मकान के मुनाफे हैं यानी जो रिहाइश है उसका मालिक दूसरे को बना रहा है इवज के बदले में। और देखो ये जो मुनाफे हैं इनका कोई अलग वजूद नहीं, ये मादूम है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि सारा साल अपना मकान किसी को किराए पर ना दें और उसमें कोई भी रिहाइश इख्तियार ना करे और आप उस सारे साल की रिहाइश इकट्ठी करते जाएं और फिर इकट्ठी किसी को दे दें? नहीं भाई, मुनाफे का अलग वजूद नहीं। जो जो वक्त गुजरता जा रहा है मुनाफे खत्म होते जा रहे हैं, तो जो मुनाफे गुजर गए वो खत्म हो चुके और जो मुस्तकबिल वाले हैं वो अभी आए ही नहीं, तो मुनाफे का तो अपना कोई अलग वजूद है ही नहीं। तो वक्फ के अंदर मुनाफे जो है उनका सदका किया जाता है। तवज्जो है, बाज फुकहा की बात चल रही है, वो फरमाते इमाम साहब के नजदीक वक्फ जायज ही नहीं है, इसलिए क्योंकि आरियत के दर्जे में है और आरियत के अंदर दूसरे को मुनाफे का मालिक बनाया जाता है। तो यहां वक्फ के अंदर भी उस चीज के उस बाग के मुनाफे का सदका किया जा रहा है और मुनाफे का तो अपना कोई अलग वजूद नहीं, ये तो मादूम चीज का सदका किया जा रहा है और मादूम चीज का सदका करना तो जायज नहीं। नहीं है, लिहाजा इसलिए वो कहते हैं इमाम साहब के नजदीक वक्फ जायज नहीं है क्योंकि इसमें मादूम चीज का सदका करना लाजिम आता है। ये बाज फुकाहा फरमाते हैं। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं सुम मकीला, फिर कहा गया है अलमनफातु मादूमत, उनके नफा जो है वो तो मादूम है, उसका तो कोई अलग वजूद नहीं। फतसद्दुकु बिल मादूम इला यसिहु, तो मादूम चीज का सदका करना सही नहीं है। फला यजूजुल वक्फु असलन इंदहु, लिहाजा वक्फ जो है वो कतअन जायज ही नहीं है इमाम साहिब के नजदीक। वह हुअल मलफूज फिल असली, और यही मलफूज है असल यानी मबसूत में भी, यही मलफूज है यानी यही अल्फाज जिक्र किए गए हैं मबसूत में भी। याद रखो मबसूत जो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की किताब है उसमें वो फरमाते हैं कान अबू हनीफा रहमहुल्लाह ला युजीज़ु ज़ालिका। मबसूत में इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं, कान अबू हनीफा ला युजीज़ु ज़ालिका, कि इमाम साहब इसको जायज करार नहीं देते, इमाम साहब इस वक्फ को जायज करार नहीं देते। तो उलमा फरमाते हैं मबसूत के इन अल्फाज की वजह से बाज़ फुकहा को धोखा लग गया। मबसूत में तो क्या जिक्र है, कान अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला ला युजीज़ु ज़ालिका, इमाम साहब इसकी इजाजत नहीं देते। तो मबसूत के इन अल्फाज के जाहिर की वजह से बाज़ फुकहा को धोखा लग गया और वो समझे शायद इमाम साहब के नजदीक वक्फ जायज ही नहीं है। हालांकि सही कौल यह है कि इमाम साहब के भी नजदीक भी वक्फ जायज है क्योंकि यह अहादीस मशहूरा से साबित है, यह इजमाए सहाबा से साबित है, और जो चीज अहादीस मशहूरा और इजमा से साबित हो इमाम साहब कैसे उसकी मुखालफत कर सकते हैं। तो यहां पर जो इख्तिलाफ है वह जवाज और आदम जवाज का नहीं है बल्कि लुजूम और अदम लुजूम का है। इमाम साहब के नजदीक वक्फ कर दिया जाए तो वह लाजिम नहीं होता और साहिबैन के नजदीक वो लाजिम हो जाता है। तो कहते हैं वह हुअल मलफूज फिल असली, और यही मलफूज है असल यानी मबसूत में भी। वल असहु, और ज्यादा सही कौल यह है कि अन्नहु जायजुन इंदहु, कि यह जो वक्फ है यह इमाम साहेब के नजदीक जायज है। इल्ला अन्नहु गैरु लाजिमिन, मगर यह कि यह जो वक्फ है यह लाजिम नहीं है। बिमंजिलतिल आरियती, आरियत के दर्जे में। ऊपर इमाम साहब का मजहब जिक्र हुआ था, इमाम साहब के नजदीक तारीफ जिक्र की इन्होंने ऊपर, हबसुल आईनी अला मिल्किल वाकिफी व तसद्दुकुल बिल मनफाती बिमंजिलतिल आरियती, कि इमाम साहब के नजदीक वक्फ किसे कहते हैं, किसी मुअय्यन चीज को वाकिफ की मिल्कियत पर रोकना और उसके मुनाफिया को सदका करना। बिमंजिलतिल आरियती, किसके दर्जे में, आरियत के दर्जे में। तो आरियत के अंदर तो मुनाफिया जो है उसका मालिक दूसरे को बनाया जाता है और मुनाफिया तो मादूम होते हैं, लिहाजा मुनाफिया का सदका भी जायज नहीं होगा। तो बाज़ फुकहा ने यह तशरीह की, लेकिन साहिब हिदाया बतला रहे हैं कि यह वक्फ जो आरियत के दर्जे में है वो इस एतबार से है कि जैसे आरियत लाजिम नहीं होती, आपने किसी को गाड़ी इस्तेमाल के लिए दे दी तो आप उससे गाड़ी वापस ले सकते हैं, आपका किसी को गाड़ी इस्तेमाल के लिए देना यह लाजिम नहीं हो जाता कि अब आप चीज वापस ही ना ले सकें। तवज्जो है। तो यह जो वक्फ को आरियत की तरह करार दिया गया वह इस एतबार से है कि जैसे आरियत लाजिम नहीं होती इसी तरह वक्फ भी लाजिम नहीं होता इमाम साहिब के नजदीक। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वल असह, और ज्यादा सही कौल यह है कि अन्नहु जायजुन इंदहु, कि वक्फ इमाम साहब के नजदीक जायज है। इल्ला अन्नहु गैरु लाजिमिन, मगर यह वक्फ लाजिम नहीं है। बिमंजिलतिल आरियती, आरियत के दर्जे में, जैसे आरियत लाजिम नहीं होती इसी तरह यह वक्फ भी इमाम साहब के नजदीक लाजिम नहीं है। भाई आगे देखिए, वाइंदा हुमा, और साहिबैन के नजदीक। अब साहिबैन वक्फ की जो तारीफ करते हैं अब उसको जिक्र करेंगे साहिबे हिदाया भाई। इमाम साहब के नजदीक वक्फ के अंदर वाकिफ की मिल्कियत रहती है, सिर्फ मुनाफिया जो है वो सदका किए जाते हैं, जबकि साहिबैन के नजदीक वक्फ के अंदर वाकिफ की मिल्कियत ही खत्म हो जाती है और वो चीज अल्लाह की मिल्कियत में चली जाती है, अल्लाह उसके मालिक बन जाते हैं। याद रखो, वैसे तो हर चीज के मालिक हकीकत में अल्लाह ही हैं, अल्लाह ही हर चीज को पैदा करने वाले और अल्लाह ही हर चीज के मालिक हैं, लेकिन मजाजन दुनिया में आम लोगों की तरह तरह भी निस्बत कर दी जाती है कि यह जैद का मकान है, जैद इसका मालिक है, यह अमर की दुकान है, अमर इसका मालिक है। तो लिहाजा दुनिया के अंदर मजाजन लोगों की तरफ भी मिल्कियत की निस्बत कर दी जाती है, लेकिन जो वक्फ है इसमें मजाजन भी किसी की तरफ निस्बत नहीं की जाती। यह माना है कि यह जो वक्फ है साहिबैन के नजदीक वक्फ जो है उससे मालिक की मिल्कियत खत्म हो जाती है और अल्लाह उस चीज के मालिक बन जाते हैं, यानी वहां अब मजाजन भी किसी इंसान की तरफ उसकी मिल्कियत की निस्बत नहीं की जाती। भाई तो कहते हैं वाइंदहुमा और साहिबैन के नजदीक हबसुल आइनी अला हुक्म मिल्किल्लाहि तआला, साहिबैन के नजदीक वक्फ जो है हबसुल आइनी किसी मुअय्यन चीज को रोकना अला हुक्म मिल्किल्लाहि तआला अल्लाह ताला की मिल्कियत के हुक्म पर, यानी अल्लाह ताला की मिल्कियत का हुक्म लगाकर किसी चीज को रोकना कि इसके मालिक अल्लाह हो गए हैं, यानी अब किसी इंसान की तरफ भी इसकी मिल्कियत की निस्बत नहीं की जाती। तो कहते हैं वह आइंदा हुमा और साहिबैन के नजदीक हब सुल आइनी वक्फ जो है वो किसी मुअय्यन चीज को रोकना अला हुक्म मिल्किल्लाहि तआला अल्लाह ताला की मिल्कियत के हुक्म पर, फयजूल मिल्कुल वाकिफ अनहु तो वाकिफ की मिल्कियत उस वक्फ से खत्म हो जाती है इलल्लाह तआला अल्लाह की तरफ, वाकिफ की मिल्कियत खत्म हो जाती है किसकी तरफ, अल्लाह की तरफ, यानी अल्लाह की मिल्कियत आ जाती है अला वजहिन ऐसे तरीके पर तऊदु मनफातुहु इलल इबादी कि उसका नफा बंदों को लौटता है, फयलजमु तो ये लाजिम हो जाता है जब वक्फ वाकिफ की मिल्कियत से ही निकल गया तो अब लाजिम हो गया अब उसका नफा फुकरा को मिलता रहेगा, अलबत्त वाकिफ की मिल्कियत खत्म हो चुकी है। भाई फिर तर्जमा देख लीजिए, फयजूल मिल्कुल वाकिफ अनहु इलल्लाह तआला तो वाकिफ की मिल्कियत खत्म हो जाती है अल्लाह की तरफ, यानी अल्लाह की मिल्कियत की तरफ अला वजहिन ऐसे तरीके पर तऊदु मनफातुहु इलल इबादी कि उस चीज का नफा जो है वो बंदों को लौटता है, फयलजमु तो ये लाजिम हो जाता है नफा बंदों को लौटता है, यानी उसके मुनाफे फुकरा को पहुंचते हैं। भाई आगे देखिए, वला युबाउ वला यूहबु वला यूरसु और इस वक्फ को न तो बेचा जा सकता है, वला यूहबु और न इसको हिबा किया जा सकता है, वला यूरसु और न इसमें वरासत जारी हो सकती है। ये साहिबैन के नजदीक है, इमाम साहब के नजदीक तो अभी भी उसमें वाकिफ की मिल्कियत है, वो उसमें रुजू भी कर सकता है। भाई आगे देखिए, वल्लफ्जु यंतज़िमुहुमा और ये लफ्ज जो है दोनों को शामिल है, वक्फ का लफ्ज दोनों को शामिल है। वक्फ की एक तारीफ की इमाम साहिब ने हबसुल आइनी अला मिल्किल वाकिफी और दूसरी तारीफ की साहिबैन ने हबसुल आइनी अला हुक्म मिल्किल्लाहि तआला, तो कहते हैं वक्फ का अपना लफ्ज जो है वो दोनों तारीफों को शामिल है। वक्फ का माना क्या था, रोकना, और इमाम साहिब ने भी वक्फ की क्या तारीफ की है, हबसुल आइनी, और साहिबैन ने भी वक्फ की क्या तारीफ की है, हबसुल आइनी, तो दोनों के अंदर एक मुअय्यन चीज को रोकने का जिक्र है। तो वक्फ का लफ्ज दोनों को शामिल है, वक्फ के सिर्फ लफ्ज को देखें तो किसी एक की तारीफ को भी हम तरजीह नहीं दे सकते, न इमाम साहब के कौल को तरजीह दे सकते हैं और ना साहिबैन के कौल को तरजीह दे सकते हैं, तो लिहाजा तरजीह के लिए हमें फिर और दलाइल को देखना पड़ेगा। तो कहते हैं वल्लफ्जु यंतज़िमुहुमा और ये वक्फ का जो लफ्ज है ये दोनों के कौल को शामिल है, व तरजीहु बिद्दलीली और तरजीह जो है वो दलील के जरिए होगी, लहुमा अब साहिबैन की दलील आ गई। भाई कहते हैं लहुमा साहिबैन की दलील जो है कौलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो हुजूर अलैहि सलाम का कौल है जो आपने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, हीन अरादा जिस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरादा फरमाया, अन यतसद्दक बिअर्ज़िन लहू कि वो सदका कर दें अपनी जमीन, बिअर्ज़िन लहू ऐ बिअर्ज़िन साबितातिन लहू, अन यतसद्दक के वो सदका कर दें, बिअर्ज़िन लहू अपनी जमीन को, तुदआ समगुन जिसको समग कहा जाता था, याद रखो ये हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला की कोई जमीन थी भाई और इसमें बड़े उम्दा किस्म के खजूर के दरख्त थे भाई, तो हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला ने इसको सदका करने का इरादा फरमाया, तो हुजूर अलैहि सलाम से जिक्र फरमाया कि मेरी ये जमीन जो है ये बड़ा उम्दा माल है, मैं इसको सदका करना चाहता हूं। आजकल लोग अपने जायद माल को सदका करते हैं। सहाबा अजीब लोग थे भाई, वो अपने सबसे आला और उमदा माल को अल्लाह के रास्ते में सदका किया करते थे भाई। तो हुजूर अलैहिस्सलाम से उन्होंने जिक्र फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मेरी ये जमीन है बड़ी आला है, मैं इसको अल्लाह के रास्ते में सदका करना चाहता हूं। तो हुजूर ने फरमाया कि इसकी असल को सदका कर दो कि इसको न बेचा जा सके, न इसमें वरासत जारी हो और न इसको हिबा किया जा सके, और इसका फल जो है उसको खर्च किया जाए, यानी फुकरा वगैरह पर उसके फल को खर्च किया जाए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस तरह उनको वक्फ करने का हुक्म दिया, क्योंकि अगर वो सारे बाग का मालिक एक गरीब को बना देंगे तो एक दफा सदका हो जाएगा और अजर मिल जाएगा, लेकिन अगर वक्फ किया जाएगा तो ये तो सदका जारिया बन गया। जब तक ये बाग मौजूद है, वो जमीन मौजूद है और फुकरा और मसाकीन इसकी आमदनी से और इसकी पैदावार से नफा उठा रहे हैं, तो उस वक्त तक उसका अजर वाकिफ को मिलता रहेगा। बात समझ में आ गई? तो इसी को जिक्र फरमा रहे हैं साहिबैन बतौर दलील के। लहुमा साहिबैन की दलील जो है कौलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है जो आपने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, हीन अरादा अन यतसद्दक बिअर्ज़िन लहू, जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जमीन को सदका करने का इरादा फरमाया, तुदआ समगुन, जिसको समघ पुकारा जाता था, यानी उस जमीन का क्या नाम था, समघ था। समघ भाई सा है, मीम और गैन है, बाज ने इसको मुनसरिफ जिक्र किया है और बाज ने इसको गैर मुनसरिफ जिक्र किया है। अगर ये मुनसरिफ है फिर तो इस पर तनवीन आएगी कि उनकी जमीन थी, तुदआ समगुन, जिसको समघ पुकारा जाता था, यानी उसका नाम समघ था, और अगर ये गैर मुनसरिफ हो फिर तनवीन नहीं आएगी, तुदआ समगु, कि उस जमीन को समघ पुकारा जाता था। और ये जो गैर मुनसरिफ है तो गैर इंसिराफ के लिए तो दो सबब चाहिए, तो इसमें कौन से दो सबब हैं, तो उलमा जिक्र फरमाते हैं एक सबब अलमियत है और दूसरा तानीस है। एक तो ये नाम है उस बाग का और उस जमीन का नाम है, और दूसरा तानीस है। मैंने आपको बतलाया था ये जो जगहों के नाम होते हैं, ये जो शहरों के नाम होते हैं, ये उमूमन गैर मुनसरिफ होते हैं, एक इनमें सबब अलमियत होती है और दूसरी तानीस भाई, यानी ये बुकातुन की तावील में है। बुकातुन देखो इसके आखिर में गोलता है और बुकातुन का माना है जमीन का कोई टुकड़ा, तो कोई शहर हो या बस्ती हो या बाग हो, यह सब जमीन के टुकड़े हैं। तो एक तो अलमियत आ गई और दूसरी तानीस भी आ गई बुकातुन की तावील में भाई। तो बास कहते हैं ये गैर मुनसरिफ है भाई। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, आगे ये हुजूर के अल्फाज जिक्र हो रहे हैं, हुजूर ने फरमाया, तसद्दक भी असलिहा ला युबाउ वला यू रसू वला यू हबू, तसद्दक भी असलिहा, कि तुम इस जमीन की असल को सदका कर दो, इस जमीन के असल को सदका कर दो, असल को यानी जमीन और जो दरख्त वगैरह हैं उनको इस तरह सदका करो कि ला युबाउ वला यू रसू वला यू हबू, कि ना इसको बेचा जा सके, वला यू रसू और ना इसमें वरासत जारी हो सके, वला यू हबू और ना इसको हिबा किया जा सके, सिर्फ इसके फलों से फायदा उठाया जाए, तो यह सदका जारिया बन जाएगा। तवज्जो है, हज़रत उमर ने अपने बाग के सदका करने का जिक्र किया हुजूर से, तो हुजूर जवाब में फरमाने लगे, तसद्दक भी असलिहा ला युबाउ वला यू रसू वला यू हबू, कि तुम इसकी असल को सदका कर दो, यानी जमीन और दरख्त वगैरह जो हैं उनको सदका कर दो कि ला युबाउ वला यू रसू वला यू हबू, न तो उनको बेचा जा सके और न उनमें वरासत जारी हो और ना उनको हिबा किया जा सके। तो यह दलील चल रही है साहिबैन की। साहिबैन फरमाते हैं देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि न उसको बेचा जा सके, न उसमें वरासत जारी हो सके और न हिबा किया जा सके। मालूम हुआ वक्फ जो है वो लाजिम हो जाता है, वक्फ जो है लाजिम हो जाता है, ना उसको बेचा जा सकता है, ना उसमें वरासत जारी होती है और ना उसको हिबा किया जा सकता है। मालूम हुआ वो वाकिफ की मिल्कियत से निकल गया है। अगर वाकिफ की मिल्कियत से नहीं निकला फिर तो उसके लिए बेचना भी जायज होता, हिबा करना भी जायज होता और उसमें वरासत भी जारी होती, लेकिन हुजूर फरमा रहे हैं कि ना इसको बेचा जा सकता है, ना वरासत जारी हो सकती है और ना इसको हिबा किया जा सकता है। आगे देखिए वली अन अल हाजता मास्सतुन, यहां से अकली दलील जिक्र कर रहे हैं। साहिबैन फरमाते हैं कि जरूरत भी इसकी पेश आती है और जब किसी चीज की जरूरत पेश आए तो शरीयत उसकी इजाजत देती है। जरूरत इसकी इसलिए पेश आती है कि बाज औकात कोई शख्स चाहता है कि मेरा वक्फ लाजिम हो जाए, मेरा वक्फ लाजिम हो जाए ताकि मुझे हमेशा सवाब मिलता रहे। और यह तभी हो सकता है जब वक्फ लाजिम हो जाए। अगर वक्फ लाजिम नहीं है तो फिर तो उसको हमेशा सवाब नहीं मिलेगा भाई, फिर तो उसके वारिसों के पास चीज आ जाएगी और वारिस बाद में इसको बेच देंगे या और कामों में लगा लेंगे। तो लिहाजा इंसान को हाजत पेश आती है कि वो किसी चीज को वक्फ करके लाजिम करना चाहता है ताकि उसे हमेशा उसका अजर मिलता रहे भाई। तो कहते हैं वली अन अल हाजता मासतुन, और इसलिए क्योंकि हाजत पेश आती है इला अयल जमल वक्फ उमीन हो कि वक्फ जो है उस वाकिफ की तरफ से लाजिम हो जाए, लियस इला सवाबहू इलई ही अलद दवामी, ताकि उसको इसका सवाब पहुंचता रहे अलद दवामी दवाम के तरीके पर, यानी हमेशा उसे सवाब पहुंचता रहे। तो मालूम हुआ इंसान को हाजत है कि वो इस तरीके पर वक्फ कर सके कि वो लाजिम हो जाए और उसे हमेशा सवाब मिलता रहे। और यहां पर इंसान की इस हाजत को पूरा करना मुमकिन भी है, वो इस तरह कि यूं कहा जाए कि वक्फ करने से इसकी मिल्कियत खत्म हो गई और इसके मालिक अल्लाह बन गए। अब वक्फ क्या हो गया? लाजिम, और अब इसको हमेशा सवाब मिलता रहेगा। तो कहते हैं वकद अम काना दफ़ हाजती ही, और नीज इस वक्फ करने वाले की हाजत को दूर करना मुमकिन भी है, उसकी हाजत को दूर करना यानी उसकी हाजत को पूरा करना मुमकिन भी है, भी इस कातिल मिल की बाई सूरत के इसकी मिल्कियत को साकित कर दिया जाए, वह जाली लिल्लाही ताला, और वह मिल्कियत अल्लाह के लिए करार दे दी जाए। बाई सूरत के इसकी मिल्कियत साकित कर दी जाए और अल्लाह की मिल्कियत करार दे दी जाए, इद लहू नजीर उन फी शरई, इसलिए क्योंकि इसकी नजीर भी शरीयत में मौजूद है, इस वक्फ की नजीर भी शरीयत में मौजूद है, वह हुवल मस्जिदू, और वह मस्जिद है, फयुजालू का जालिका, लिहाजा वक्फ को भी इसी तरह कर दिया जाएगा। याद रखो, याद रखो, जब कोई शख्स अपनी जमीन को मस्जिद बना देता है तो वो मस्जिद खालिस अल्लाह के लिए हो जाती है, बंदों के हुकूक उससे मुनकते हो जाते हैं, बंदों का इसे नफा उठाना जायज नहीं, ये सिर्फ इबादत के लिए है। लिहाजा बंदे इसे नफा नहीं उठा सकते कि कोई इसको किराए पर देकर किराया लेना चाहे या कोई इसको अपने रहने का ठिकाना बना ले, तो मस्जिद से बंदों का हक मुनकते हो जाता है, बंदों का हक मुनकते हो जाता है और वो वक्फ लाजिम हो जाता है, उसमें रुजू नहीं हो सकता। इमाम साहब भी फरमाते हैं कोई शख्स अगर अपनी जमीन को मस्जिद बना देगा तो बंदों का हक उसे मुनकते हो गया, वो अब उस मालिक की मिल्कियत से निकल गई, तो लिहाजा वो लाजिम हो गई, अब उसमें रुजू नहीं हो सकता। तो साहिबैन फरमाते हैं जैसे मस्जिद जो है उसमें वक्फ लाजिम हो जाता है, इसी तरह और बाग या दुकान है या जमीन है उनके अंदर भी इसी तरह वक्फ लाजिम हो सकता है। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं इद लहू नजीर उन फी शरई, इसलिए क्योंकि इस वक्फ की शरीयत के अंदर नजीर भी मौजूद है, इसकी नजीर और मिसाल मौजूद है। जब एक जगह ऐसा हो सकता है तो यानी मस्जिद के अंदर ऐसा हो सकता है तो दूसरे वक्फ में भी ऐसा हो सकता है। तो कहते हैं इद लहू नजीर उन फी शरई, इसलिए क्योंकि शरीयत में इसकी नजीर मौजूद है, वह हुल मस्जिद, और वह मस्जिद है, फयुजालू का दालिक, तो वक्फ को भी इसी मस्जिद की तरह करार दिया जाएगा, यानी वक्फ करने से वक्फ लाजिम हो जाएगा। यहां एक इश्काल होता है, इश्काल ये कि साहिबैन ने वक्फ को मस्जिद पर कियास किया, जैसे मस्जिद के अंदर वक्फ लाजिम हो जाता है इसी तरह और चीजों में भी वक्फ लाजिम हो सकता है। तो साहिबैन पर इश्काल होता है कि आप वक्फ के लुजूम की दलील जिक्र फरमा रहे हैं और नजीर के तौर पर मस्जिद को आपने जिक्र फरमाया, हालांकि मस्जिद भी तो वक्फ ही है, तो गोया आप वक्फ को वक्फ ही पर कियास कर रहे हैं, वक्फ को वक्फ पर ही कियास करके साबित करना चाहते हैं, हालांकि एक चीज को दूसरी चीज पर कियास करके साबित किया जाता है। उसी चीज पर कयास करके साबित नहीं किया जा सकता। तो उसका जवाब देते हैं उलमा कि नहीं, साहिबैन का इस्तेदलाल सही है, इसलिए क्योंकि मस्जिद अगरचे वक्फ है लेकिन वो एक खास वक्फ है, उसके खास अहकाम हैं, उससे बंदों का हक मुनकते हो जाता है, वो खालिस अल्लाह के लिए हो जाती है, जबकि और वक्फ जो है उससे तो बंदे नफा उठाते हैं। आपने अगर बाग भी वक्फ किया है तो उसकी आमदनी से फुकरा नफा उठा रहे हैं, अगर आपने एक घर भी वक्फ किया है कि इसके अंदर मुसाफिर आकर रहा करेंगे तो देखो मुसाफिर उससे नफा उठा रहे हैं। तो मस्जिद अगरचे वक्फ है लेकिन खास वक्फ है, उसके अहकाम बाकी औकाफ से मुख्तलिफ हैं, लिहाजा बाकी औकाफ को मस्जिद पर कियास करना सही है। भाई बात समझ में आ गई। आगे देखिए भाई, वली अबी हनीफा रहिमहुल्लाह ताला, अब इमाम साहब की दलील आ गई। साहिबैन ने बतलाया कि वक्फ किया जाए तो वक्फ लाजिम हो जाता है, चुनाचे हदीस भी जिक्र कर दी कि वक्फ को बेचा नहीं जा सकता, हिबा नहीं किया जा सकता और उसमें वरासत जारी नहीं होती, और नीज बतलाया कि इंसान भी मोहताज है, वो चाहता है कि उसकी तरफ से कोई वक्फ लाजिम हो जाए ताकि उसको उसका सवाब मिलता रहे और उसकी हाजत पूरी करना मुमकिन भी है कि उस चीज को उसकी मिल्कियत से निकालकर अल्लाह की मिल्कियत करार दे दिया जाए और उसकी नजीर भी मौजूद है शरीयत के अंदर और वो मस्जिद है, लिहाजा वक्फ को भी मस्जिद की तरह करार दिया जाएगा। अब इमाम साहब की दलील आ गई भाई, तो कहते हैं वली अबी हनीफा रहमतुल्लाह, और इमाम साहब की जो दलील है कौलुहु अलैहि सलातु वस्सलाम, वो हुजूर अलैहि सलाम का ये कौल है कि आपने फरमाया ला हुबुसा अन फराइज़िल्लाह तआला, ला हुबुसा अन फराइज़िल्लाह तआला। याद रखो हुबुस जमा है हबीस की और हबीस फ़ईल है बमाने मफ़ऊल के, यानी हबीस बमाने महबूस के है। अभी साहिब हिदायत ने आपको बतलाया वक्फ का क्या माना है, हब्स भाई रोकना, और जिस चीज को रोका जाए उसको क्या कहते हैं, महबूस भाई। तो इसी महबूस को हबीस भी कहते हैं, हा बा या और सीन है हबीस, और इसी हबीस की जमा है हुबुस भाई, यानी रोकी हुई चीजें, रोकी हुई चीजें। और आगे हदीस में आ रहा है अन फराइज़िल्लाह ताला, याद रखो फराइज जमा है फरीजा की और फरीजा कहते हैं मुकर्ररा हिस्से को। आपने पढ़ा है कि वारिसों के बाकायदा हिस्से अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाए हैं तो इनको फराइज कहते हैं, ये जो वारिसों के मुकर्ररा हिस्से हैं इनको फराइज कहते हैं और ये जमा है फरीजा की भाई। तो इमाम साहब की दलील वो हुजूर अलैहि सलाम का ये कौल है कि आपने फरमाया ला हुबुसा अन फराइज़िल्लाह ताला, यानी अल्लाह के मुकर्ररा हिस्सों से रोकना नहीं है, यानी अल्लाह ने वारिसों के जो हिस्से मुकर्रर फरमाए हैं तो मूरिस के माल को उनसे रोका नहीं जा सकता, मूरिस के माल को उनसे रोका नहीं जा सकता। मालूम हुआ कि किसी माल को वारिसों से नहीं रोका जा सकता, जब किसी माल को वारिसों से नहीं रोका जा सकता तो मालूम हुआ वक्फ जो किया है वो भी लाजिम नहीं है, वो भी वारिसों की तरह मुंतकिल होता है, क्योंकि हदीस में आया है कि मूरिस के मरने के बाद किसी माल को वारिसों से रोका नहीं जा सकता, और यह वक्फ वारिसों की तरफ तभी मुंतकिल हो सकता है जब यह कहा जाए कि यह माल वाकिफ की मिल्कियत से नहीं निकला था। तो कहते हैं वली अबी हनीफा रहमहुल्ला, और इमाम साहब की जो दलील है कौलुहु अलैहि सलातु वस्सलाम, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल है कि आपने फरमाया ला हुबुसा अन फराइज़िल्लाह तआला, कि किसी माल को रोकना नहीं है अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हिस्सों में से। ये तो एक दलील थी इमाम साहब की, मालूम हुआ वाकिफ की मिल्कियत वक्फ से खत्म नहीं होती, इसीलिए उसमें वरासत जारी होती है। अब आगे दूसरी दलील आ गई, कहते हैं वान शुरैहिन, और काजी शुरैह जो हैं उनसे रिवायत है, वो फरमाते हैं जा मुहम्मदुन अलैहि सलातु वस्सलामु बिबैइल हुबुस, के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हुबुस की बैअ के साथ तशरीफ लाए, वो हुबुस यानी वक्फ की बैअ के साथ तशरीफ लाए। गुज़श्ता उम्मतों के अंदर औकाफ की बैअ जायज नहीं थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शरीयत में औकाफ की बैअ को लेकर आए, यानी इस शरीयत में औकाफ की बैअ जायज है। और औकाफ की बैअ तभी जायज हो सकती है जब यह वक्फ जो है वाकिफ की मिल्कियत से न निकला हो। अगर यह वक्फ वाकिफ की मिल्कियत से निकल गया है और लाजिम हो गया है, फिर तो इसके अंदर बैअ जायज नहीं हो सकती। तो कहते हैं वान शुरैहिन रहिमहुल्लाह ताला, और काजी शुरैह रहिमहुल्लाह से रिवायत है, जा मुहम्मदुन अलैहि सलातु वस्सलाम बिबैउल हुबुस, कि हुजूर अलैहि सलाम जो है वो औकाफ की बैअ के साथ तशरीफ लाए। मालूम इससे पहले वक्फ लाजिम होता था और हुजूर अलैहि सलाम तशरीफ लाए तो वक्फ लाजिम ना रहा भाई। वली अन नल मिल का, अब यहां से अकली दलील जिक्र कर रहे हैं। इमाम साहेब फरमाते हैं कि किसी चीज को वक्फ किया जाए तो वाकिफ की मिल्कियत खत्म नहीं होती। दो नकली दलीलें जिक्र कर दी, एक हदीस और एक काजी शुरह का कौल भाई। अब अकली दलील जिक्र करेंगे। कहते हैं वली अन नल मिल का बाकिन फी ही, और इसलिए क्योंकि वो जो वक्फ है उसके अंदर बंदे की मिल्कियत बाकी है। इमाम साहब की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं वक्फ के अंदर बंदे की मिल्कियत बाकी है। आपने एक बाग वक्फ किया है, अभी भी इस बाग में बंदे की मिल्कियत बाकी है। भाई क्या दलील है बंदे की मिल्कियत बाकी है? कहते हैं आप देखते नहीं कि इसके साथ हुकूकुल इबाद का ताल्लुक है, इससे लोग नफा उठा रहे हैं, फुकरा को इसकी आमदनी पहुंच रही है, तो हुकूकुल इबाद का ताल्लुक अभी भी बाग के साथ है। और जब किसी चीज के साथ हुकूकुल इबाद का ताल्लुक हो, मालूम हुआ बंदे उस चीज के मालिक हैं, बंदे उस चीज के मालिक हैं, इसीलिए वो इसे नफा उठा सकते हैं। अगर बंदे इसके मालिक ना होते तो उनके लिए नफा उठाना भी जायज ना होता। जैसे मस्जिद है, मस्जिद के मालिक बंदे नहीं, लिहाजा मस्जिद से नफा उठाना, उसको किराए पर देना या उसको किसी और मकसद के अंदर इस्तेमाल में लाना, ये जायज नहीं है भाई। बात समझ में आ गई? तो इमाम साहब फरमाते हैं कि ये जो वक्फ है इसके अंदर अभी भी बंदों की मिल्कियत मौजूद है, क्योंकि इसके साथ अभी भी हुकूकुल इबाद का ताल्लुक है भाई। तो बंदों की मिल्कियत मौजूद है, अब किसकी मिल्कियत है, वाकिफ की है या किसी और की है? कहते हैं किसी और की मिल्कियत तो बिल इत्तेफाक नहीं है। जाहिर सी बात है किसी और की मिल्कियत इसमें बिला वजह नहीं आ सकती। तो जब मिल्कियत मौजूद है और किसी और की भी नहीं है, तो मानना पड़ेगा कि अभी भी इसमें वाकिफ ही की मिल्कियत है भाई। तो कहते हैं वली अन नल मिल का बाकिन फी ही, कहते हैं इसलिए क्योंकि ये जो वक्फ है इसके अंदर अभी भी मिल्कियत बाकी है। भी दलील अन्नहु यजूजुल इंतिफाउ बिही, इस दलील की वजह से कि इसे नफा उठाना जायज है, जराअतन बैतिबार जराअत के, वसुकनन और रिहाइश के एतबार से, वगैरह जालिका और इसके अलावा, इससे अभी भी इस नफा उठाना जायज है जराअत या रिहाइश वगैरह के एतबार से भाई। तो कहते हैं बिदलील अन्नहु यजूजुल इंतिफाउ बिही ज़राअतन व सुकनन वगैरह सालिक, इस दलील से कि इस वक्त से नफा उठाना जायज है ज़राअत और रिहाइश वगैरह के एतबार से, वल मिल्कु फीही लिल वाकिफी, और इसके अंदर जो मिल्कियत है वो वाकिफ की है। ये बात तो तय है कि बंदे इसके मालिक हैं, इसीलिए हुकूकुल इबाद का इससे ताल्लुक है, बंदे इसकी आमदनी से नफा उठा रहे हैं। लेकिन मालिक क्या वाकिफ है या कोई और? तो कोई और तो कतई तौर पर मालिक नहीं, जब कोई और कतई तौर पर मालिक नहीं तो वाकिफ ही मालिक हुआ भाई। तो कहते हैं वल मिल्कु फीही लिल वाकिफी, और मिल्कियत इसके अंदर वाकिफ की है। अला तरा, क्या आप देखते नहीं, अन्न लहू विलायत तसर्रुफी फीही बिसर्फ गल्लातिही इला मसारिफीहा व नस्बिल कुवामी फीहा। इमाम साहब की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं अभी भी इसके अंदर वाकिफ की मिल्कियत है, चुनाचे आप देखते हैं कि इसके अंदर सारे तसारुफात वाकिफ ही करता है। किसी को निगरान मुकरर करना है, वो भी वक्फ करने वाला ही निगरान मुकरर करता है। और इसकी आमदनी जो है वो किस जगह पर खर्च करनी है, वो वक्फ करने वाला ही उस मसरफ पर उस आमदनी को खर्च करता है। तो उसकी आमदनी अगरचे है तो सदका, लेकिन वाकिफ अपने इख्तियार से उसको अपने मकाम पर खर्च करता है। तो जब तमाम तसरुफात का इख्तियार वाकिफ को है, मालूम हुआ यह चीज अभी भी उसकी मिल्कियत में है भाई। तो कहते हैं अला तरा, क्या आप देखते नहीं, अन्न लहू विलायत तसरुफी फी ही, कि वाकिफ को इसमें तसरुफ की विलायत हासिल है, बिसरफी गल्लाती ही इला मसारिफी हा, आमदनियों को उनके मसारिफ पर खर्च करने में, व नस्बिल कुवामी फी हा, कुवाम जमा है कायम की, और कायम कहते हैं जिम्मेदार और निगरान को, व नस्बिल कुवामी फी हा, और इसमें निगरानों को मुकर्रर करने की। ये सारे तसरुफात कौन करता है, वो वाकिफ करता है, इल्ला अन्नहु यतसद्दकु बिमनाफिही, मगर ये कि वाकिफ जो है वो इसके मनाफिया को सदका करता है, यानी तसरुफात तो वो करता है लेकिन खुद इस्तेमाल नहीं करता बल्कि सदका करता है। तो कहते हैं इल्ला अन्नहु यतसद्दकु बिमनाफिही, मगर ये कि ये उसके मनाफे को सदका करता है, फसार शबीहल आरियती, तो ये वक्फ जो है ये भी आरियत के मुशाबे हो गया, वली अन्नहु यहताजु इल तसद्दुक बिल गल्लति दाइमन। यहां से साहिब हिदाया इमाम साहिब की दूसरी अकली दलील जिक्र फरमा रहे हैं। पहली अकली दलील तो जिक्र कर दी कि मिल्कियत उस वक्फ में अभी भी बाकी है, इसीलिए तो हुकूकुल इबाद का उसके साथ ताल्लुक है भाई, और जब मिल्कियत बाकी है तो फिर वाकिफ ही की मिल्कियत हो सकती है, किसी और की मिल्कियत नहीं हो सकती। और अब दूसरी दलील दे रहे हैं, कहते हैं वजह यह कि जो वाकिफ है ये चाहता है मुझे इस जमीन की आमदनी के सदके का हमेशा सवाब मिलता रहे, ये जो जमीन मैंने वक्फ की है, ये जो बाग मैंने वक्फ किया है, इसकी आमदनी का सदका हमेशा मेरी तरफ से होता रहे, हमेशा मुझे इसका सवाब मिलता रहे, और वाकिफ की तरफ से हमेशा सदका तभी हो सकता है जब वाकिफ इस वक्फ का मालिक हो। अगर वाकिफ इस वक्फ का मालिक ही ना रहा तो फिर उसकी तरफ से सदका कैसे हो सकता है भाई, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वली अन्नहु यहताजु इल तसद्दुकी, इसलिए क्योंकि वाकिफ मोहताज है सदका करने का, बिल गल्लति उस वक्फ की पैदावार का, दाइमन हमेशा, वाकिफ मोहताज है कि वो इस वक्फ की पैदावार का हमेशा सदका करता रहे, वला तसद्दुका अन्हु, और उस वाकिफ की तरफ से तो सदका नहीं हो सकता, इल्ला बिल बका अला मिल्की ही, मगर यह कि वो वक्फ जो है उस वाकिफ की मिल्कियत पर बाकी रहे, जब वो वक्फ वाकिफ की मिल्कियत पर बाकी रहेगी तो उसकी आमदनी भी हमेशा वाकिफ की तरफ से ही सदका होती रहेगी और उसको अजर मिलता रहेगा। वली अन्नहु ला युमकिनु, यहां से तीसरी अकली दलील दे रहे हैं साहिब हिदाया इमाम साहिब की तरफ से भाई, कहते हैं वली अन्नहु ला युमकिनु, और कहते हैं इसलिए क्योंकि यह मुमकिन नहीं है, अयुजाल मिल्कुहु, कि उस वाकिफ की मिल्कियत खत्म कर दी जाए, ला इला मालिकिन, ला इला मालिक की तरफ, एक जमीन पर से एक चीज पर से वाकिफ की मिल्कियत खत्म कर दी जाए और आगे कोई और भी इसका मालिक नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज ममलूक तो हो और कोई उसका मालिक ना हो। जब कोई चीज ममलूक है तो उसके लिए मालिक जरूर चाहिए भाई, तवज्जो है। साहिबैन फरमाते हैं कि वो वक्फ जो है वाकिफ की मिल्कियत से निकल जाता है, इमाम साहब फरमाते हैं नहीं, अगर वाकिफ की मिल्कियत से निकलेगा तो इस सूरत में जवाल मिल्क ला इला मालिक लाजिम आएगा, कि वाकिफ की मिल्कियत खत्म हुई और आगे कोई और मालिक भी नहीं है। तो ये एक चीज ममलूक हो और उसका कोई मालिक ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इस पर इश्काल होता है कि इताक के अंदर तो ऐसा होता है, एक आदमी अपने गुलाम को आजाद कर देता है, देखो अब उस गुलाम का कोई मालिक नहीं है, तो जवाब याद रखना, इताक के अंदर जब गुलाम को आजाद किया जाता है तो अब वो ममलूक रहा ही नहीं, अब वो ममलूक रहा ही नहीं, क्योंकि वो इंसान है और इंसान के अंदर असल जो है वो आजादी है, गुलामी जो पेश आती है वो किसी आरिस की वजह से पेश आती है, तो गुलाम पर से जब मिल्कियत खत्म हो गई तो वो आजाद आदमी बन गया, अब उस पर किसी की मिल्कियत नहीं, जबकि और चीजों में ऐसा नहीं हो सकता कि उन पर से मिल्कियत खत्म कर दी जाए, या मिल्कियत तो बाकी हो लेकिन मालिक कोई ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वली अन्नहु ला युमकिनु, और कहते हैं इसलिए क्योंकि यह मुमकिन नहीं है, अन युजाल मिल्कुहु, कि उस वाकिफ की मिल्कियत खत्म कर दी जाए, ला इला मालिकिन, बगैर किसी मालिक के, कि एक चीज ममलूक भी हो और उसका कोई मालिक भी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। लिअन्नहु गैरु मशरूइन मा बकाइही, इसलिए क्योंकि ये मशरूअ नहीं है, ये जायज नहीं है, मा बकाइही ऐ मा बकाइल मालिकी, मालिक के होते हुए, मालिक के होते हुए एक चीज जो है वो ममलूक भी है और उसका कोई मालिक भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ये मशरूअ नहीं है भाई। तो कहते हैं लिअन्नहु गैरु मशरूइन मा बकाइही, इसलिए क्योंकि ये ज़वाल मिल्क ला इला मालिक, ये मशरू नहीं है, मा बकाइही मालिक के होते हुए, का साइबती जैसे कि साइबा है, जैसे कि साइबा है, याद रखो साइबा अरब जो है बाज औकात कोई मन्नत मान लेते थे कि मैं इस सफर पर जा रहा हूं, अगर मैं खैर खैरियत से वापस आ गया तो मेरी ये ऊंटनी या ये मेरा ऊंट साइबा है, या कोई शख्स बीमार होता तो वो मन्नत मानता कि अगर मैं ठीक हो गया तो मेरा ये ऊंट या ऊंटनी साइबा है। चुनांचे इस तरीके पर वो ऊंट या ऊंटनी को बुतों के नाम पर आजाद कर देते थे, ऊंट या ऊंटनी को बुतों के नाम पर आजाद छोड़ देते थे, और इस तरह के ऊंट या ऊंटनी से किसी किस्म का नफा उठाने को वो हराम समझते थे, और नीज इस ऊंट और ऊंटनी का वो बड़ा एहतराम करते थे कि इसको बुतों के नाम पर छोड़ा गया है, लिहाजा किसी के पानी के जखीरे पर ये ऊंट या ऊंटनी जाते तो इनको पानी पीने से रोका नहीं जाता था, किसी की चरागाह में ये जाते थे तो इनको चरने से नहीं रोका जाता था, और इनसे किसी किस्म का कोई फायदा नहीं उठाता था, न इन पर सवारी की जाती थी, न इन पर बोझ लादा जाता था, न इस ऊंटनी के दूध को कोई इस्तेमाल करता था। वो कहते थे कि ये बुत के नाम पर आजाद करता ऊंट या ऊंटनी है, तो लिहाजा वो इनसे किसी किस्म का नफा नहीं उठाते थे, तो ऐसी ऊंटनी को साइबा कहा जाता था। और कुरान में अल्लाह इसके बारे में फरमाते हैं, मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हामिन, मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन, और अल्लाह ने नहीं बनाया किसी जानवर को बहीरा, वला साइबा और ना साइबा बनाया है, वला वसीला और ना वसीला बनाया है, वला हामिन और ना हाम बनाया है। ये जो बाकी हैं ये बहीरा वसीला और हाम, ये भी इसी तरह के जानवर थे जो बुतों के नाम पर आजाद छोड़ दिए जाते थे। तो बहरहाल यहां साइबा की तफसील बयान करना मकसद था भाई। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि ये जो तुम बात जानवरों को बहीरा या साइबा या वसीला या हाम बना देते हो, ये कोई अल्लाह ने मुकर्रर नहीं किया, ये तुमने अपनी तरफ से झूठी बातें घड़ी हुई हैं भाई। अल्लाह ने किसी जानवर को ऐसा नहीं बनाया ना ऐसा करने का हुक्म दिया है। मालूम हुआ साइबा जो है वो गैर मशरू है, साइबा गैर मशरू है। अब आइए जरा किताब की इबारत पर, फिर देख लीजिए तीसरी दलील। कहते हैं वली अन्नहु ला युमकिनो, इसलिए क्योंकि ये मुमकिन नहीं है, अन युजाल मिल्कुहु ला इला मालिकिन, कि उस वाकिफ की मिल्कियत खत्म कर दी जाए, ला इला मालिकिन बगैर किसी मालिक के, लि अन्नहु गैरु मशरूइन मा बकाइही, इसलिए क्योंकि मालिक के होते हुए ये गैर मशरू है, कसाइबती जैसे कि साइबा है कि वो भी गैर मशरू है भाई। बात समझ में आ गए। तो इमाम साहब फरमाते हैं अगर वक्फ से मिल्कियत खत्म हो जाए और मालिक कोई नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है, एक चीज ममलूक भी है और उसका मालिक भी कोई नहीं है, ये तो साइबा की तरह हो गया और साइबा तो गैर मशरू है, लिहाजा इस तरह जवाल मिल्क ला इला मालिक ये भी क्या होगा, गैर मशरू होगा भाई। बिखिलाफ इल इताकी, बखिलाफ आजाद करने के, लिअन्नहु इतलाफुन, इसलिए क्योंकि वो इतलाफ है। ये एक एतराज का जवाब दे रहे हैं साहिबे हिदाया। एतराज यह होता है कि अगर जवाल मिल्क ला इला मालिक गैर मशरू होता तो फिर तो एताक को भी जायज नहीं होना चाहिए था, हालांकि बिल इत्तेफाक गुलाम या बांदी को आजाद करना जायज है, बल्कि अजरो सवाब का बाइस है भाई। तो उसका जवाब दे रहे हैं कि ये जो इताक है ये जवाल मिल्क ला इला मालिक नहीं है बल्कि ये इसकात मिल्क है, मिल्कियत को साकित कर देना, मिल्कियत को खत्म कर देना। और ये सिर्फ इंसान के अंदर हो सकता है क्योंकि इंसान के अंदर असल आजादी है। तो गुलाम के ऊपर जो मिल्कियत आ गई थी वो आर्जी तौर पर आई थी, उस मिल्कियत को खत्म कर देना इसको कहते हैं इताक भाई। जबकि और चीजों में तो ऐसा नहीं हो सकता भाई। बात समझ में आ गई? तो ये जो गुलाम को आजाद किया जाता है ये जो इताक है ये जवाल मिल्क ला इला मालिक नहीं है बल्कि ये इसकात मिल्क है, मिल्कियत को खत्म कर देना, साकित कर देना। अब इस पर मिल्कियत रही ही नहीं, ये ममलूक रहा ही नहीं। वो जो वक्फ था वो तो ममलूक था और उसका कोई मालिक ना हो ऐसा नहीं हो सकता। और ये गुलाम तो ममलूक रहा ही नहीं, इस पर से तो मिल्कियत ही साकित कर दी, इस पर से तो मिल्कियत ही साकित कर दी। चुनांचे इसीलिए ये जो इताक है ये इतलाफ है। इतलाफ का माना है कोई चीज हलाक करना, जाया करना। तो जब कोई शख्स अपने गुलाम या बांदी को आजाद करता है तो दुनियावी एतबार से वो अपना माली नुकसान कर रहा है। तो दुनियावी एतबार से ये इतलाफ है, वो अपने माल को तलफ कर रहा है। तवज्जो है? तो लिहाजा इताक जायज है क्योंकि उसमें जवाल मिल्क ला इला मालिक नहीं है बल्कि वहां पर इसकात मिल्क है, वो इतलाफ है। तवज्जो है? तो कहते हैं बेखिलाफ इल इताक, बखिलाफ आजाद करने के, लि अन्नहु इतलाफ, क्योंकि वो इतलाफ है यानी मिल्कियत को साकित करना है। तो दुनियावी एतबार से ये इतलाफ है, मौतिक इताक के जरिए अपने माल को तलफ कर रहा है, हलाक कर रहा है। जबकि वक्फ में तो माल को तलफ नहीं किया जाता बल्कि उसके मुनाफे को फुकरा वगैरह पर सदका किया जाता है। लिहाजा इताक वक्फ के मिसल नहीं है, लिहाजा आप वक्फ को इताक पर कियास नहीं कर सकते। आगे देखिए भाई, वह बिखिलाफ इल मस्जिद, और बखिलाफ मस्जिद के, भाई साहिबैन ने इस आम वक्फ को कियास किया था मस्जिद पर, तो उसका भी जवाब दे रहे हैं कि नहीं, आप आम वक्फ को मस्जिद पर कियास नहीं कर सकते। मस्जिद तो खालिस अल्लाह के लिए हो जाती है, उससे तो बंदों के हुकूक का ताल्लुक ही नहीं रहता। बंदों के लिए मस्जिद से नफा उठाना जायज नहीं होता, हालांकि आम वक्फ से तो बंदे और फुकरा और मसाकीन नफा उठाते हैं। तो लिहाजा आप आम वक्फ को मस्जिद पर कियास नहीं कर सकते। तो कहते हैं वबी खिलाफ इल मस्जिद, और बखिलाफ मस्जिद के, ले अन्नहु जुइला खालिसन लिल्लाह तआला, इसलिए क्योंकि मस्जिद को तो खालिस अल्लाह के लिए करार दे दिया गया। वलिहादा ला यजूज़ु लिंतिफाउ बिही, और इसीलिए मस्जिद से नफा उठाना जायज नहीं होता, मस्जिद को अपने इस्तेमाल में लाना जायज नहीं होता। वहा हुना लम यनकतिअ हक़ुल अब्द अन्हु, और यहां वक्फ के अंदर तो बंदे का हक वक्फ से मुनक़ति नहीं हुआ। फलम यसिर खालिसन लिल्लाह ताला, तो ये आम वक्फ जो है ये तो खालिस अल्लाह के लिए ना हुआ, लिहाजा आपका इसको मस्जिद पर कयास करना सही नहीं है भाई। यहां तक बात समझ में आ गई? याद रखो भाई, याद रखो, साहिब हिदाया ने इमाम साहिब के मजहब को तरजीह दी है भाई, और इसीलिए इमाम साहिब के दलाइल आखिर में जिक्र फरमाए। लेकिन याद रखो, उलमा ने साहिबैन के कौल को तरजीह दी है भाई। चुनांचे बहुत से फुकाहा वो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के कौल पर फतवा देते कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक वक्फ लाजिम हो जाता है जब किसी को निगरान मुकरर करके उसके कब्जे में वो वक्फ दे दिया जाए। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक जब किसी को निगरान मुकरर कर दिया जाए और वह वक्फ उसके कब्जे में दे दिया जाए तो वक्फ लाजिम हो जाता है। तो बहुत से फुकाहा वो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के कौल को तरजीह देते हैं, लेकिन उलमाए मुहक्किकीन फरमाते हैं कि फतवा इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के कौल पर है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा आसानी है कि बस जुबान से कह दिया कि मेरा बाग आज से वक्फ है फुकरा के लिए, तो कहते ही वक्फ हो गया और वो बाग उस वाकिफ की मिल्कियत से निकल गया भाई। तो इसमें आसानी है, लिहाजा फतवा जो है वो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के कौल पर है। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, काल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, याद रखो इस काला से मुराद साहिब हिदाया है भाई। साहिब हिदाया ने मजाहिब की तफसील भी बयान फरमा दी, उनके दलाइल भी जिक्र फरमा दिए, अब मतन की वजाहत फरमा रहे हैं साहिब हिदाया। मतन के अंदर साहिब कुदूरी ने जिक्र फरमाया था कि इमाम साहिब के नजदीक दो सूरतों के अंदर वाकिफ की मिल्कियत वक्फ से खत्म हो जाती है। एक तो यह कि काजी उसका फैसला कर दे और दूसरी सूरत यह है कि वाकिफ उसको अपनी मौत के साथ मुअल्लक कर दे कि मेरे मरने के बाद मेरा यह बाग वक्फ है। तो साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि मतन में तो साहिब कुदूरी ने यह जिक्र किया कि दो सूरतों के अंदर वाकिफ की मिल्कियत वक्फ से खत्म हो जाएगी इमाम साहिब के नजदीक। साहिब कुदूरी ने क्या बतलाया मतन में कि इमाम साहिब के नजदीक दो सूरतों में वाकिफ की मिल्कियत वक्फ से खत्म हो जाती है। तो साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि काजी के फैसले की वजह से तो वाकिफ की मिल्कियत खत्म हो जाएगी, यह बात तो सही है, यह कौल तो सही है, लेकिन वाकिफ वक्फ को अपनी मौत के साथ मुअल्लक करे तो क्या इस सूरत में भी इमाम साहब के नजदीक वाकिफ की मिल्कियत खत्म होगी या नहीं, इसमें फुकाहा का इख्तिलाफ है। बाज फुकाहा फरमाते हैं कि वाकिफ वक्फ को अपनी मौत के साथ मुअल्लक कर दे तो इमाम साहब के नजदीक वाकिफ की मिल्कियत वक्फ पर से खत्म हो जाती है, जबकि बाज फुकाहा फरमाते हैं कि नहीं, इमाम साहब के नजदीक वाकिफ वक्फ को अपनी मौत से भी मुअल्लक कर दे फिर भी वाकिफ की मिल्कियत खत्म नहीं होती, हां अलबत्ता वो लाजिम हो जाता है, हां अलबत्ता वो लाजिम हो जाता है, जैसे वसीयत जो है किसी शख्स के मरने के बाद लाजिम हो जाती है, उसको नाफिज किया जाता है। तो कहते हैं قال رضي الله تعالى عنه صاحب هدايا فرماتے ہیں قال في الكتاب کے صاحب قدوری نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا لا يزول ملك الواقف دیکھو یہ وہ پھر متن ذکر کر رہے ہیں متن میں صاحب قدوری نے کیا ذکر کیا تھا कि इमाम साहब के नजदीक वाकिफ की मिल्कियत दो सूरतों में खत्म होती है, तो वो मतन की इबारत जिक्र कर रहे हैं। तो साहिब हिदाया फरमाते हैं قال في الكتاب کے صاحب قدوری نے اپنی کتاب میں فرمایا لا يزول ملك الواقف الا ان يحكم به الحاكم او يعلقه بموته کہ واقف کی ملکیت وقف سے ختم نہیں ہوتی مگر یہ کہ حاکم اس کا فیصلہ کر دے یا واقف اس وقف کو اپنی موت کے ساتھ معلق کر دے। कहते हैं वहादा फी हुक्म अल हाकिम सहीह। मैंने बतलाया भाई, साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि हाकिम फैसला करे फिर तो यह बात सही है कि वाकिफ की मिल्कियत से यह वक्फ निकल जाएगा, लेकिन वाकिफ वक्फ को अपनी मौत के साथ मुअल्लक करे तो फिर उसमें फुकाहा का इख्तिलाफ है। तो कहते हैं वहादा फी हुक्म अल हाकिम सहीह, और यह जवाल मिल्क जो है हाकिम के फैसले में तो सही है, यानी हाकिम फैसला कर देगा तो फिर वाकिफ की मिल्कियत वक्फ से खत्म हो जाएगी। لأنه قضاء في مجتهد فيه, इसलिए क्योंकि यह फैसला है मुज्तहद फी मसले में। मुज्तहद फी मसला वो मसला जिसमें इज्तिहाद की गुंजाइश हो, यानी जिसमें फुकहा का इख्तिलाफ हो, बाज़ फुकहा एक बात की तरफ गए हैं तो बाज़ फुकहा दूसरी बात की तरफ गए हैं, मालूम हुआ इस मसले में इज्तिहाद की गुंजाइश थी, जब भी बाज़ फुकहा की राय एक है और बाज़ की राय दूसरी है, अगर इसमें इज्तिहाद की गुंजाइश न होती तो फिर तो इसमें फुकहा का इख्तिलाफ भी न होता। तो लिहाजा जब भी कोई ऐसा मसला हो जिसमें फुकहा का इख्तिलाफ हो, यानी जिसमें इज्तिहाद की गुंजाइश हो, तो काजी जब भी इस किस्म के मसले में कोई फैसला कर देगा, याद रखो काजी का फैसला लाजिम हो जाएगा, यानी काजी ने फैसला कर दिया और इख्तिलाफ खत्म हो गया। जैसे भाई आम लोग अपना झगड़ा काजी के पास लेकर जाते हैं और काजी फिर उन दोनों के दरमियान फैसला कर देता है तो झगड़ा खत्म हो जाता है, काजी का फैसला नाफिज हो जाता है। इसी तरह मुज्तहद फी मसले के अंदर भी जब फुकहा दोनों तरफ गए हैं, बास की राय एक है बास की राय दूसरी है, लेकिन जब काजी फैसला कर देता है एक राय के मुताबिक तो गोया काजी ने झगड़ा खत्म कर दिया, काजी ने फैसला कर दिया कि यह मसला इस तरह है, काजी ने फैसला कर दिया कि यह मसला इस तरह है, तो जब काजी ने यह फैसला कर दिया तो अब झगड़ा खत्म हुआ। जैसे आम लोगों के मुकदमात में काजी फैसला करे तो झगड़ा खत्म हो जाता है, इसी तरह यहां पर भी मुज्तहद फी मसले के अंदर जब काजी फैसला करे तो झगड़ा खत्म हो जाता है और काजी का फैसला लाजिम हो जाता है। तो यहां पर भी वक्फ के मसले में इमाम साहब और साहिबैन का इख्तिलाफ था, इमाम साहब के नजदीक किसी चीज को वक्फ किया जाए तो वक्फ लाजिम नहीं होता, बल्कि वाकिफ इसमें रुजू भी कर सकता है, जबकि साहिबैन के नजदीक वक्फ लाजिम हो जाता है भाई। तो यह मुज्तहद फी मसला है, इसमें इज्तिहाद की गुंजाइश है, इसमें फुकहा दोनों तरफ गए हैं, लेकिन जब काजी फैसला कर देगा तो फिर काजी का फैसला लाजिम हो जाएगा। लिहाजा एक शख्स ने अपना बाग वक्फ किया और एक मुतवल्ली के सुपुर्द कर दिया, अब उसकी आमदनी फुकरा पर खर्च की जा रही है, लेकिन इमाम साहब के नजदीक तो वक्फ लाजिम नहीं है, उसमें रुजू भी हो सकता है। तो कुछ मुद्दत के बाद उस वाकिफ ने फिर रुजू करना चाहा अपने बाग के अंदर, उसने कहा यह बाग मुझे वापस दे दो, अब यह मैं इसकी आमदनी अपने इस्तेमाल में लाना चाहता हूं। तो वह जो निगरान और मुतवल्ली था उसने बाग वापस देने से इनकार कर दिया और वह इस वाकिफ को काजी के पास ले गया और काजी ने इस वक्फ के लाजिम होने का फैसला कर दिया। तो देखो यह मुज्तहद ही मसला था, इमाम साहब के नजदीक वक्फ जो है वाकिफ की मिल्कियत से नहीं निकलता और लाजिम नहीं होता, जबकि साहिबैन के नजदीक वक्फ जो है वह लाजिम हो जाता है और वाकिफ की मिल्कियत से निकल जाता है। तो जब काजी ने इस वक्फ के लाजिम होने का फैसला कर दिया तो अब वो काजी का फैसला नाफिज हो गया, यह वक्फ लाजिम हो गया और उस वाकिफ की मिल्कियत से निकल गया, यानी इख्तिलाफ खत्म हो गया। जब काजी ने फैसला कर दिया तो गोया वो इख्तिलाफ खत्म हो गया, अब यह वक्फ लाजिम हो गया, अब यह वाकिफ की मिल्कियत से निकल गया, अब वो इसके अंदर रुजू नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वहादा फी हुक्म अल हाकिम सहीहुन, यानी ये वाकिफ की मिल्कियत का खत्म होना ये हाकिम के फैसले के अंदर तो यह बात सही है कि हाकिम फैसला करे तो वाकिफ की मिल्कियत खत्म हो जाएगी इमाम साहब के नजदीक भी, लिअन्नहु कजा उन फी मुज्तहदिन फी ही, इसलिए क्योंकि मुज्तहद फी मसले के अंदर फैसला है। अम्मा फी तालिक ही बिल मौती, बाकी जो दूसरी बात थी मतन के अंदर कि वाकिफ वक्फ को अगर अपनी मौत के साथ मुअल्लक कर दे तो उस सूरत के अंदर भी इमाम साहब के नजदीक वाकिफ की मिल्कियत खत्म हो जाएगी। तो आपको बतलाएंगे कि नहीं, उसमें फिर फुकहा का इख्तिलाफ है। बास फुकहा फरमाते हैं कि वाकिफ वक्फ को अपनी मौत के साथ मुअल्लक कर दे तो इमाम साहब के नजदीक यह वक्फ वाकिफ की मिल्कियत से निकल जाएगा, लेकिन बास फुकहा फरमाते हैं कि वाकिफ वक्फ को अपनी मौत के साथ भी मुअल्लक कर दे फिर भी इमाम साहब के नजदीक यह वक्फ वाकिफ की मिल्कियत से नहीं निकलता, हां अलबत्ता लाजिम हो जाता है, अब वाकिफ इसके अंदर रुजू नहीं कर सकता। और साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि सही कौल यही है कि वाकिफ वक्फ को अपनी मौत के साथ मुअल्लक भी कर दे फिर भी इमाम साहिब के नजदीक के वक्फ उस वाकिफ की मिल्कियत से नहीं निकला, सिर्फ लाजिम हुआ है भाई। तो कहते हैं अम माफी तालीक ही बिल मौती, और बाकी वक्फ को अपनी मौत के साथ मुअल्लक करना फसही हो, तो सही कौल यह है क्या नहु ला यजूल मिल्कुहु, कि उससे वाकिफ की मिल्कियत खत्म नहीं होती, इल्ला अन्नहु तसद्दुकुम बिमनाफिही मुअब्बदा, मगर ये उस वक्त के मुनाफे को मुअब्बद तरीके पर सदका करना है, फयसीरु बिमंजिलतिल वसीयति बिल मुनाफिई मुअब्बदा, तो ये मुअब्बद तरीके पर मुनाफे की वसीयत के दर्जे में हो गया, ये वक्त वसीयत के दर्जे में हो गया और वक्त के अंदर मुनाफे का सदका किया जाता है, तो गोया ये भी किसी चीज के मुनाफे के मुअब्बद तौर पर वसीयत कर रहा है। मुअब्बद यानी हमेशा के लिए, हमेशा के लिए वक्फ के अंदर मुनाफे को सदका किया जाता है, तो ये ऐसे ही हो गया जैसे हमेशा के लिए मुनाफे की वसीयत की जा रही है, हमेशा के लिए मुनाफे की वसीयत की जा रही है, जैसे एक शख्स जो है वसीयत करता है मेरे मरने के बाद मेरा यह बाग जैद को दे देना, तो एक तो सूरत यह है कि उसने बाग ही की वसीयत कर दी और एक सूरत यह है कि वो कहता है मेरे मरने के बाद मेरा यह जो बाग है इसकी आमदनी हमेशा जैद पर और फिर आगे जैद की औलाद पर खर्च की जाए। तो देखो वसीयत के अंदर कभी माल की वसीयत की जाती है और कभी मुनाफे की, और इस वसीयत के अंदर भी देखो यह शख्स अपने बाग के मुनाफे की वसीयत कर रहा है जैद के लिए हमेशा के लिए, तो यह वक्फ भी इस वसीयत के दर्जे में हो गया जिसमें मुनाफे की वसीयत की जाती है हमेशा के लिए। तो कहते हैं फसहीहु, तो सही कौल यह है कि अन्नहु ला यजूलु मिल्कुहु, के वाकिफ की मिल्कियत इस वक्त से खत्म नहीं होती, इल्ला अन्नहु तसद्दुकुम बिमनाफिईही मुअब्बदा, मगर यह उस वक्त के मुनाफे को हमेशा के लिए सदका करना है, फयसीरु, तो यह वक्फ हो गया बिमंजिलतिल वसीयति बिल मुनाफिई मुअब्बदा, हमेशा के लिए मुनाफे की वसीयत के दर्जे में, यह वक्फ हमेशा के लिए मुनाफे की वसीयत के दर्जे में हो गया, फयलज़मु, तो यह वक्फ लाजिम हो जाएगा, जैसे वसीयत लाजिम हो जाती है और जैसे वसीयत सुलू से माल में नाफिज की जाती है इसी तरह यह वक्फ भी मरने वाले के सुलू से माल में नाफिज होगा भाई। वल मुराद बिल्हा के मिल मुवल्ला फ अमल मुहक्कम फफी इख्तिलाफुल मशाइख। भाई मतन के अंदर आया था इल्ला अन यहकुम बिहिल हाकिमु, मगर यह कि हाकिम इसका फैसला कर दे, मगर यह कि हाकिम इसका फैसला कर दे। अब इस हाकिम से क्या मुराद है, क्योंकि हकम यहकिमु हकमन फहुआ हाकिमुन, इसका माना तो होता है फैसला करना, हाकिम कहते हैं फैसला करने वाला। और जैसे काजी फैसला करने वाला होता है, इसी तरह बाज औकात दो आदमियों में झगड़ा होता है, वो काजी के पास नहीं जाते, वो किसी तीसरे आदमी को वैसे ही अपने दरमियान हाकिम मुकरर कर देते हैं कि आप हम दोनों के दरमियान इस झगड़े में फैसला कर दीजिए, आप जो भी फैसला करेंगे हमें कबूल होगा। तो अब जो मतन में हाकिम आया, इससे कौन सा हाकिम मुराद है, क्या काजी मुराद है जिसे बादशाह मुकरर करता है, या कोई भी फैसला करने वाला मुराद है? तो आपको बतलाएंगे कि इस हाकिम से मुराद वो हाकिम है जिसे बादशाह ने मुकरर किया हो। भाई तो कहते हैं वल मुराद बिल हाकिम अल मुवल्ला, वल्ला का माना है जिम्मेदार बनाना, मुवल्ला जिसको जिम्मेदार बनाया गया है, जिसको जिम्मेदारी दी गई है, यानी काजी। भाई मुवल्ला किसे कहते हैं, जिसको विलायत दी गई है, जिसे जिम्मेदार बनाया गया है। तो कहते हैं वल मुराद बिल हाकिम अल मुवल्ला, और हाकिम से मुराद वो है जिसको जिम्मेदार बनाया गया है, यानी जिसे बादशाह ने मुकरर किया है। फअमल मुहक्कमु, बाकी वो जिसको हकम बनाया गया है, जिसको फैसला करने वाला बनाया गया है, तो उसके अंदर फुकाहा का इख्तिलाफ है। काजी फैसला करे तो काजी का फैसला इख्तिलाफ को उठा देता है। फुकाहा के अंदर इख्तिलाफ था, बास फुकाहा एक तरफ गए, बास दूसरी तरफ गए, लेकिन जब काजी फैसला कर देता है तो गोया काजी ने इख्तिलाफ को खत्म कर दिया। काजी ने जो फैसला किया बात इसी तरह है भाई, वो बात लाजिम हो जाती है। जबकि मुहक्कम जो है, यानी कोई आम फैसला करने वाला जो है, उसमें फुकाहा का इख्तिलाफ है। बास कहते हैं यह आम फैसला करने वाला जो है, वो भी इस तरह का कोई फैसला करेगा तो वह बात उन आदमियों पर लाजिम हो जाए, जबकि बास फुकाहा फरमाते कि नहीं, आम फैसला करने वाले के फैसले से यह फुकाहा का इख्तिलाफ खत्म नहीं होगा। और याद रखो सही कौल यही है कि आम फैसला करने वाला अगर इस तरह फैसला करे तो उसकी वजह से यह हम नहीं कहेंगे कि फुकाहा का इख्तिलाफ ही खत्म हो गया, बल्कि काजी इसके फैसले को बातिल कर सकता है। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वल मुराद बिल हाकिम अल मुवल्ला, तो हाकिम से मुराद वो है जिसको मुकरर किया गया है। फ अमल मुहक्कम फफी इख्तिलाफुल मशाइख, बाकी वो जिसको फैसला करने वाला बनाया गया है तो उसमें फुकाहा का इख्तिलाफ है। वला वकफा फी मरज़ मौतिही, इधर देखिए भाई सूरत यह है, एक शख्स मरज़ुल मौत में वक्फ करता है। आप पढ़ चुके कि सेहत की हालत में अगर कोई वक्फ करे इमाम साहब के नजदीक वो लाजिम नहीं, तो मरजुल मौत में अगर कोई वक्फ करे तो अब उसका क्या हुक्म है? तो इमाम तहावी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो मरजुल मौत में वक्फ है यह वसीयत के दर्जे में है, और वसीयत तो लाजिम होती है, सुलूस के अंदर नाफिज की जाती है, मालूम हुआ यह वक्फ भी लाजिम होगा। लेकिन आपको बतलाएंगे कि नहीं, सही कौल यही है कि मरजुल मौत में जो वक्फ है वह भी सेहत वाले वक्फ की तरह है इमाम साहिब के नजदीक। और जैसे सेहत के अंदर वक्फ लाजिम नहीं होता, इसी तरह मरजुल मौत में भी वक्फ किया जाए तो वह लाजिम नहीं होता। तो कहते हैं वला वकफा फी मरज़ मौती ही, और अगर वाकिफ ने अपने मरज़ुल मौत में वक्फ किया। قال الطحاوي رحمه الله تعالى, तो इमाम तहावी रहमतुल्लाह फरमाते हैं हुआ بمنزله الوصيه بعد الموت, तो यह मौत के बाद वसीयत के दर्जे में है, यानी जैसे वसीयत लाजिम होती है यह भी लाजिम है। وصحيح, और सही यह है कि انه لا يلزمه, कि यह वक्फ भी वाकिफ पर लाजिम नहीं है, कि यह भी वाकिफ पर लाजिम नहीं है। इंद अबी हनीफत रहमहुल्ला, इमाम साहिब के नजदीक। व इंद हुमा यलजमुहू, और साहिबैन के नजदीक ये वक्त भी लाजिम है, ये जो मरजुल मौत में वक्फ किया ये लाजिम है। इल्ला अन्नहु युअतबरु मिनस सुलुसी, मगर ये कि इसका एतबार सुलुस में से किया जाएगा, क्योंकि ये वसीयत के दर्जे में है। वल वक्फ फिस सेहति मिन जमीउल माल, और वक्फ जो है सेहत की हालत में सारे माल में हो सकता है, लेकिन मरजुल मौत में सिर्फ सुलुस में। तो कहते हैं वल वक्फ फिस सेहति मिन जमीउल माल, और सेहत में वक्फ जो है सारे माल में हो सकता है। व इदा कानल मिल्कु यज़ूलु इंदहुमा, अब आगे साहिबैन की बात जिक्र करने लगे हैं। इमाम साहब का तो मजहब बयान हो गया कि उनके नजदीक वक्फ लाजिम नहीं होता, अलबत्ता साहिबैन के नजदीक वक्फ लाजिम हो जाता है, तो वक्फ कब लाजिम होगा तो मैंने बतला दिया, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक सिर्फ कहने से ही वक्फ लाजिम हो जाएगा। एक आदमी सिर्फ इतना कह दे ये मैंने अपना बाग जो है ये वक्फ कर दिया, इसकी आमदनी आइंदा फुकरा पर खर्च की जाए, तो उसके ये कहते ही वक्फ लाजिम और यह बाग उसकी मिल्कियत से निकल गया, लिहाजा अब इसमें वो रुजू नहीं कर सकता। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक भी वक्फ लाजिम होता है, लेकिन उसमें किसी मुतवल्ली को मुकर्रर करना और उसके कब्जे में यह बाग देना यह जरूरी है, फिर लाजिम हो जाएगा, और फिर जब लाजिम हो गया अब इसमें रुजू नहीं हो सकता भाई। तो कहते हैं वह ईदा कानल मिल्कु यजूलु इंदहुमा, और जब मिल्कियत जो है साहिबैन के नजदीक जायल हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो यजूलु बिल कौल इंदा अबी यूसुफ रहमहुल्ला, तो यह मिल्कियत कहने से ही खत्म हो जाएगी इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला के नजदीक। और यहां बैन सुतूर लिखा हुआ है वह अलैहिल फतवा, इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला के कौल पर फतवा है। कहते हैं वह हुआ कौलु शाफिई रहमहुल्ला, और यही कौल है इमाम शाफिई रहमहुल्ला का भी, वो भी फरमाते हैं सिर्फ कहने से ही वक्फ लाजिम हो जाता है। वो फरमाते हैं ये वक्फ इताक की तरह है, जैसे कोई शख्स अपनी जुबान से अपने गुलाम से कहे जाओ तुम आजाद हो, तो ये कहते ही गुलाम आजाद हो जाता है, अब यहां रुजू की कोई सूरत नहीं। तो इमाम शाफी और इमाम अबू यूसुफ रहिमहुमल्लाह फरमाते हैं कि ये वक्फ इताक की तरह है, जैसे इताक सिर्फ कहने से हो जाता है, इसी तरह वक्फ भी सिर्फ कहने से लाजिम हो जाता है। तो कहते हैं वह हुआ कौलु शाफिई रहमहुल्ला, और यही कौल है इमाम शाफिई रहमहुल्ला का भी, बिमंजिलतिल इताकी, कि यह वक्फ जो है इताक के दर्जे में है, जैसे इताक जो है उसमें गुलाम को किसी के कब्जे में नहीं दिया जाता बल्कि सिर्फ जुबान से आजाद किया जाता है, तो यहां भी सिर्फ जुबान से ही वक्फ हो जाएगा, किसी के कब्जे में देने की जरूरत नहीं है भाई। तो कहते हैं बिमंजिलतिल इताकी, यह वक्फ जो है इताक के दर्जे में है, लिअन्नहु इस्कातुल मिल्क, इसलिए क्योंकि ये जो वक्फ है ये इस्कात मिल्क है, ये वक्फ इस्कात मिल्क है, जैसे इताक जो है वो इस्कात मिल्क है। वइंद मुहम्मदिन रहिमहुल्लाह, और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह के नजदीक, ला बुद्द मिन तस्लीम इलल मुतवल्ली, जरूरी है सुपुर्द करना मुतवल्ली के, निगरान और जिम्मेदार के सुपुर्द करना जरूरी है, लिअन्नहु हक़ुल्लाह तआला, इसलिए क्योंकि ये वक्फ जो है अल्लाह का हक है, और जब ये अल्लाह का हक है तो हक दूसरे के सुपुर्द करना पड़ता है, फिर ही हक अदा होता है, तो जब ये अल्लाह का हक है तो अल्लाह के सुपुर्द करना जरूरी है भाई। तो कहते हैं लिअन्नहु हक़ुल्लाह तआला, इसलिए क्योंकि ये वक्फ जो है अल्लाह का हक है, व इन्नमा यस्बुतु फीही फी ज़िम्नि तस्लीम इलल अब्दी, अब भाई अब जब ये अल्लाह का हक है तो ये अल्लाह के सुपुर्द करना जरूरी है, लेकिन अल्लाह के कब्जे में एक चीज को देना ये कसदन साबित नहीं हो सकता, कसदन अल्लाह के कब्जे में आप एक चीज दे दें यह नहीं हो सकता, हां ज़िम्नन हो सकता है कि दूसरे के कब्जे में अल्लाह के कब्जे को भी मान लिया जाए। मसलन आप सदका फकीर को देते हैं तो फकीर को मालिक बनाया, तो फकीर को मालिक बनाने के जिमन में अल्लाह को मालिक बनाना भी आ गया, तो दूसरे के कब्जे के जिमन में अल्लाह का कब्जा साबित हो सकता है, लेकिन कसदन अल्लाह का कब्जा यहां साबित नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक मुतवल्ली के सुपुर्द करना जरूरी है, लिअन्नहु हक़ुल्लाह तआला, क्योंकि वक्फ जो है अल्लाह का हक है, वही नमा यस्बुतु फीही, और ये अल्लाह का हक जो है वक्फ में साबित हो जाता है, फी ज़िम्नि तस्लीमी इलल अब्दी, बंदे के सुपुर्द करने के जिमन में, जब किसी दूसरे मुतवल्ली के कब्जे में इस बाग को देगा तो उस कब्जे के जिमन में अल्लाह का कब्जा भी साबित हो जाएगा। तो कहते हैं वह इन नमा यस्बुतु फीही, और अल्लाह का जो हक है वो इस वक्त के अंदर साबित हो जाएगा, फी ज़िम्नि तस्लीमी इलल अब्दी, बंदे के सुपुर्द करने के जिमन में, जब बंदे के सुपुर्द करेगा तो गोया अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, लिअन्न तमलीक मिनल्लाह तआला, इसलिए क्योंकि अल्लाह को मालिक बनाना, देखो यहां पर भी तमलीक का सिला मिन आ रहा है, जिसको मालिक बनाया जाए उस पर मिन दाखिल होता है, और यह वक्फ भी किसका हक है, अल्लाह का, तो अल्लाह को उसका मालिक बनाया जाएगा, लेकिन अल्लाह को मालिक बनाना वो कसदन तो नहीं हो सकता, अलबत्ता ज़िमनन हो सकता है। तो कहते हैं लिअन्न तमलीक मिनल्लाह तआला, और अल्लाह को इसका मालिक बनाना, वह हुआ मालिकुल अशियाई, इस हाल में कि वो तो तमाम चीजों का मालिक है, हकीकत में तो अल्लाह तमाम चीजों के मालिक हैं, लिहाजा कसदन आप एक चीज का अल्लाह को मालिक बनाए यह तो मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह तो हर चीज के मालिक हैं। यह जो चीजों की निस्बत दूसरों की तरफ की जाती है कि यह जैद मालिक है या अमर मालिक है, यह तो मजाजन निस्बत की जाती है। तो जब अल्लाह हकीकतन हर चीज का मालिक है तो अल्लाह को मालिक बनाना कसदन हो ही नहीं सकता भाई। तो कहते हैं लि अन तमलीक मिन अल्लाह ताला, इसलिए क्योंकि अल्लाह को मालिक बनाना, वह हुआ मालिकुल अशिया, इस हाल में कि वह तमाम चीजों का मालिक है, तो यह अल्लाह को मालिक बनाना ला यतहक्कु मकसूदन, यह मकसूद होकर साबित नहीं हो सकता। वकद यकूनु तबअन लिगैरिही, और कभी कभार यह गैर के ताबे हो सकता है, यानी गैर के ताबे होकर अल्लाह को मालिक बनाना हो सकता है। फयाखुज़ु हुक्महु, तो लिहाजा ये उसका हुक्म ले लेगा भाई। एक है तमलीक मीन अल्लाह, अल्लाह को मालिक बनाना, और एक है किसी दूसरे को मालिक बनाना, तो किसी दूसरे को मालिक बनाने के जिमन में अल्लाह को मालिक बनाना हो सकता है, लेकिन कसदन अल्लाह को मालिक बनाना नहीं हो सकता भाई, क्योंकि अल्लाह तो हर चीज के मालिक है भाई। बात समझ में आ रही है? तो कहते हैं फया खुद हुक्महू, तो ये जो अल्लाह को मालिक बनाना है ये उस गैर को मालिक बनाने का हुक्म ले लेगा। और गैर को मालिक कैसे बनाते हैं? उसके कब्जे में देकर, तो उसके कब्जे के जिमन में अल्लाह का कब्जा भी साबित हो जाएगा। तो ये माना है फया खुज हुक्महू, फया खुजू के अंदर जमीर राजे है तमलीक मीन अल्लाह को, फया खुजू तो ये जो तमलीक मीन अल्लाह है यानी अल्लाह को जो मालिक बनाना है ये ले लेगा हुक्महू उस तमलीक मीन गैरी ही को, वो जो दूसरे को मालिक बनाना है उसका हुक्म ले लेगा, यानी उसके जिमन में अल्लाह का मालिक होना भी साबित हो जाएगा। यूं कहो उस गैर के कब्जे के जिमन में अल्लाह का कब्जा भी साबित हो जाएगा। फयुना जलुमन जिलता जकात व सदकती, तो इसको जकात और सदके के दर्जे में उतार लिया जाएगा, इस वक्फ को जकात और सदके के दर्जे में उतार लिया जाएगा। जैसे जकात और सदका अल्लाह का हक है, लेकिन वहां भी कसदन अल्लाह को मालिक नहीं बनाया जाता बल्कि फकीर को मालिक बनाया जाता है, और फकीर के मालिक बनाने के जिमन में अल्लाह का मालिक होना भी साबित हो जाता है। तो इसी तरह वक्फ के अंदर भी होगा भाई। यह माना है फयुना जलुमन जिलता जकाती व सदकती, तो लिहाजा इस वक्फ को जो है जकात और सदके के दर्जे में उतार लिया जाएगा। आगे देखिए قال واذا صح الوقف على اختلافهم, قال صاحب قدوری فرماتے ہیں واذا صح الوقف على اختلافهم, اور جب وقف صحیح ہو جائے یعنی ثابت ہو جائے على اختلافهم ہمارے ان ائمہ کے اختلاف پر بھائی ہمارے ان ائمہ کے اختلاف پر یعنی ہمارے ائمہ کے اختلاف کے مطابق جب وقف صحیح ہو جائے ہر امام نے جو جو صورت ذکر فرمائی ہے کہ ان کے مطابق تب وقف صحیح ہوتا ہے اس صورت کے مطابق جب وقف صحیح ہو جائے جیسے امام محمد رحمہ اللہ نے شرط لگائی ہے کہ وقف تب صحیح ہوگا جب اس چیز کو متولی کے سپرد کر دیا جائے گا جبکہ امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ شرط نہیں لگائی تو جب وقف صحیح ہو جائے हमारे अइमा के इख्तिलाफ पर। तो आगे जरा मतन देखिए भाई, कहते हैं वइदा सहल वक्फ अल इख्तिलाफिहिम, और जब वक्फ सही हो जाए अइमा के इख्तिलाफ पर तो खराजा मिन मिल्किल वाकिफी, तो यह वक्फ जो है वाकिफ की मिल्कियत से निकल जाएगा, यह वक्फ जो है वाकिफ की मिल्कियत से निकल जाएगा। तो साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि इमाम साहब के मजहब पर तो वक्फ वाकिफ की मिल्कियत से नहीं निकलता, इमाम साहब के मजहब के मुताबिक तो वक्फ वाकिफ की मिल्कियत से नहीं निकलता। इमाम साहब का क्या मजहब गुजरा? इमाम साहब के नजदीक अगर कोई शख्स अपनी जमीन या जायदाद वगैरह वक्फ करता है तो वक्फ करने से वो लाजिम नहीं, वो शख्स इसमें रुजू भी कर सकता है, वो शख्स इस जमीन को बेच भी सकता है, ये जमीन वो किसी को हिबा भी कर सकता है और इसके अंदर वरासत भी जारी होगी। तवज्जो है? तो इमाम साहब के नजदीक वक्फ के सही होने के साथ लाजिम होना जरूरी नहीं। तवज्जो है? लाजिम होने का माना तो यह है कि उस वक्फ में रुजू नहीं किया जा सकता, लेकिन इमाम साहब के नजदीक तो वाकिफ के लिए वक्फ में रुजू करना जायज है। तो इमाम साहब के नजदीक जब वक्फ सही हो जाए तो वाकिफ की मिल्कियत से नहीं निकलता, वाकिफ उसमें रुजू कर सकता है, वो उसको बेच सकता है। और इमाम साहब के नजदीक वक्फ लाजिम भी हो जाए, जैसे वाकिफ अपनी मौत के साथ वक्फ को मुअल्लक करे तो यह वक्फ जो है वसीयत के दर्जे में होता है, और जैसे वसीयत लाजिम होती है और सुलुस के अंदर नाफिज की जाती है, इसी तरह यह वक्फ भी लाजिम हो जाएगा और सुलुस के अंदर नाफिज होगा। लेकिन इस सूरत में भी इमाम साहब फरमाते हैं कि वक्फ लाजिम भी हो जाए फिर भी वाकिफ की मिल्कियत से नहीं निकलता। तवज्जो है, अलबत्ता अगर हाकिम और काजी फैसला कर दे फिर वक्फ जो है वाकिफ की मिल्कियत से निकल जाता है। तो मालूम हुआ इमाम साहब के नजदीक वक्फ चाहे सही हो चाहे लाजिम हो किसी भी सूरत में वो वाकिफ की मिल्कियत से नहीं निकलता, जबकि साहिबैन के नजदीक वक्फ जो है जब सही हो जाए तो वो लाजिम हो जाता है और जब लाजिम हो जाता है तो वाकिफ की मिल्कियत से निकल जाता है। तो लिहाजा यहां पर ये जो मतन में आया, दोबारा मतन देख लीजिए, वह इदा सहल वक्फ अलख्तिलाफिहिम खाराजा मिन मिल्किल वाकिफी, कि जब वक्त जो है अइमा के इख्तिलाफ पर सही हो जाए तो वाकिफ की मिल्कियत से निकल जाता है। तो यहां याद रखो शारहीन फरमाते हैं कि यहां ये जो सहा आया वह इदा सहल वक्फ, तो यह सहा बमाने सबता के है कि जब वक्फ साबित हो जाए, जब वक्फ साबित हो जाए तो खराजा मिन मिल्किल वाकिफी, तो फिर वो वाकिफ की मिल्कियत से निकल जाएगा। और साहिबे हिदाय आपको बतलाएंगे कि ये साहिबैन के मजहब पर है, ये साहिबैन के मजहब पर है, साहिबैन के मजहब के मुताबिक जब वक्फ सही हो जाए तो फिर वो वाकिफ की मिल्कियत से निकल जाता है। तवज्जो है, जबकि इमाम साहब के मजहब के मुताबिक वक्फ चाहे सही हो जाए चाहे वक्फ लाजिम हो जाए कि वो वाकिफ की मिल्कियत से नहीं निकलता, क्योंकि इमाम साहब ने वक्फ की क्या तारीफ की थी, हबसुल ऐन अला मिल्किल वाकिफी, एक चीज को रोकना वक्फ करने वाले की मिल्कियत पर। भाई तो इमाम साहब के नजदीक वक्फ सही हो जाए या लाजिम हो जाए वो वाकिफ की मिल्कियत से नहीं निकलता। तो साहिबे हिदाया आपको बतलाएंगे कि जो मतन में आया खराजा मिन मिल्किल वाकिफी, कि वक्फ जब सही हो जाए तो वाकिफ की मिल्कियत से निकल जाता है, यह साहिबैन का मजहब है, ये साहिबैन का मजहब है। जब ये साहिबैन का मजहब है तो पीछे सहा जो आया वो सहा बमाने सबता के है, वो सहा बमाने सबता के है। इस सहा को लजिमा के माना में लेने की हाजत नहीं, क्योंकि अगर इस सहा को लजिमा के माना में आप कर भी लें फिर भी ये साहिबैन ही का मजहब बनता है, इमाम साहब का मजहब नहीं बनता। तो यहां सहा को लजिमा के माना में लेने की कोई हाजत नहीं, जब वक्फ सही हो जाए साहिबैन के नजदीक तो वाकिफ की मिल्कियत से निकल जाता है, और साहिबैन के नजदीक जब वक्फ सही होता है तो लाजिम भी हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो यहां मतन में जो सहा आया ये किस माना में होगा, सबता के माना में, और आगे एक दो सफे के बाद आगे मतन आएगा कि जब वक्फ सही हो जाए तो उसको बेचना जायज नहीं। वहां याद रखना वहां सहा बमाने लजीमा के आएगा, वहां सहा का क्या माना करेंगे, लाजिमा के, जब वक्फ लाजिम हो जाए फिर बेचना जायज नहीं। वजह यह कि साहिबैन के नजदीक तो जब वक्फ सही हो जाए तो वो लाजिम ही हो जाता है और उसका बेचना जायज नहीं होता, जबकि इमाम साहब के नजदीक तो वक्फ सही हो जाए फिर तो उसमें रुजू भी हो सकता है और उसे बेचा भी जा सकता है। हां, वक्फ जब लाजिम हो जाए फिर उसको बेचना जायज नहीं। तो आगे एक दो सफे के बाद मतन आएगा कि जब वक्फ सही हो जाए तो उसे बेचना जायज नहीं। तो वहां पर सहा जो है लजीमा के माना में होगा, ताकि तीनों अइमा के मजहब के मुताबिक बात बन जाए। भाई इमाम साहब के नजदीक भी जब वक्फ लाजिम हो जाए फिर उसको बेचना जायज नहीं, वैसे बेचना जायज। तो वहां सहा का क्या माना करेंगे, लजीमा के, लेकिन यहां सहा का माना लजीमा के करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इमाम साहब के नजदीक वक्फ लाजिम भी हो जाए फिर भी वाकिफ की मिल्कियत से नहीं निकलता, इल्ला ये कि काजी फैसला कर दे। भाई तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वह इदासा हल वक्फ अल इख्तिलाफिहिम, कि जब वक्फ जो है वो साबित हो जाए अइमा के इख्तिलाफ पर, वफी बाजिन नुसखी व इदस्तुहिक्का मकान कौलिही व इदासहा। यहां आगे साहिब हिदाया आपको बतला रहे हैं कि कुदूरी के बाज नुस्खों में तो यही इबारत है व इदासहल वक्फ, जबकि कुदूरी के बाज नुस्खों में सहा की जगह उस्तुहिक्का का लफ्ज आया है व इदस्तुहिक्कल वक्फ, और इस्तहक्का का एक माना है लाजिम होने के, तो उस नुस्खे के मुताबिक फिर माना क्या बनेगा कि जब वक्फ लाजिम हो जाए। तवज्जो है, तो बाद नुस्खों में क्या आया, वह इजा सहल वक्फ, और बाद नुस्खों में इजा तुहिक्कल वक्फ, कि जब वक्फ लाजिम हो जाए तो फिर वाकिफ की मिल्कियत से निकल जाता है। तो कहते हैं वफी बाज़ नुसखी व इज़ा तुहिक्का, और कुदूरी के बाज़ नुस्खों में व इज़ा तुहिक्का की इबारत है मकान कौलिही व इज़ा सहा, साहिब कुदूरी के कौल व इज़ा सहा की जगह पर, व इज़ा सहा की जगह पर बाज़ नुस्खों में व इज़ा तुहिक्का का कौल नकल किया गया है। भाई इबारत समझ में आ गई, तो कहते हैं वफी बाज़ नुसखी व इज़ा तुहिक्का मकान कौलिही व इज़ा सहा, और कुदूरी के बाज़ नुस्खों में व इज़ा सहा के कौल की जगह पर व इज़ा तुहिक्का जिक्र है। आगे फिर मतन शुरू हो रहा है, खराजा मिन मिल्किल वाकिफी, कि जब वक्फ अइमा के इख्तिलाफ पर सही हो जाए तो खराजा मिन मिल्किल वाकिफी, तो ये वक्फ जो है वक्फ करने वाले की मिल्कियत से निकल जाता है। वलम यदखुल फी मिल्किल मौकूफ अलैही, और ये वक्फ जो है मौकूफ अलैह की मिल्कियत में दाखिल नहीं होता। मौकूफ अलैह वो शख्स जिस पर इस वक्फ को वक्फ किया गया है। मसलन एक आदमी ने अपना बाग वक्फ कर दिया कि मेरे इस बाग की आमदनी जैद पर खर्च की जाए, तो जैद हुआ मौकूफुन अलै, भाई जिस पर इस बाग की आमदनी को वक्फ किया गया है। बात समझ में आ गई। तो मतन में दो बातें जिक्र हुई कि जब वक्फ सही हो जाए तो वाकिफ की मिल्कियत से निकल जाता है और मौकूफ अलै की मिल्कियत में दाखिल नहीं होता। तो इनमें से जो पहली बात है कि वक्फ वाकिफ की मिल्कियत से निकल जाता है, यह सिर्फ साहिबैन का मजहब है। जबकि अगली बात जो है वलम यदखुल फी मिल्किल मौकूफी अलैही, यह तो हमारे तीनों अइमा के नजदीक है कि वक्फ सही भी हो जाए या लाजिम भी हो जाए वह मौकूफ अलै की मिल्कियत में दाखिल नहीं होता। तो कहते हैं वक्फ जो है जब सही हो जाए तो वाकिफ की मिल्कियत से निकल जाता है। वलम यदखुल फी मिल्किल मौकूफी अलैही, और मौकूफ अलैह की मिल्कियत में दाखिल नहीं होता। लिअन्नहु, यहां से अब दलील जिक्र कर रहे हैं, बतलाएंगे कि अगर यह वक्फ मौकूफ अलैह की मिल्कियत में दाखिल हो जाता तो वो तो मालिक बन जाता, और जिस तरह वो अपनी बाकी ममलूका चीजों में तसर्रुफ करता है मौकूफ अलैह के लिए इस वक्त में भी तसर्रुफ जायज होता। वो इसको बेचना चाहता तो बेच सकता था, वो इसको हिबा करना चाहता तो हिबा कर सकता था, लेकिन मौकूफ अलैह न इस वक्त को बेच सकता है और न किसी को हिबा कर सकता है। मालूम हुआ वो इस वक्त का मालिक नहीं बना। एक आदमी ने अपनी जमीन वक्फ कर दी कि इसकी आमदनी जैद पर खर्च की जाए, तो जैद मौकूफ अलैह है, जैद इस बाग का मालिक नहीं बना। अगर जैद मालिक बन जाता तो जैद के लिए तो इस बाग को बेचना भी जायज होता और किसी को तोहफे के तौर पर देना भी जायज होता, लेकिन जैद के लिए इस बाग को बेचना या हिबा करना जायज नहीं। मालूम हुआ बाग अभी भी उसकी मिल्कियत में दाखिल नहीं हुआ। यह तो एक दलील है कि वक्फ मौकूफ अलैह की मिल्कियत में दाखिल नहीं होता। आगे दूसरी दलील भी जिक्र करें, पहले ये पहली दलील देख लीजिए। कहते हैं अन्नहु लौ दखला फी मिल्किल मौकूफी अलैही, इसलिए क्योंकि वक्फ जो है अगर वह मौकूफ अलैह की मिल्कियत में दाखिल हो जाता ला यतवक्कफु अलैही, तो वह इसी पर वक्फ न रहता, वो वक्फ इसी पर वक्फ न रहता। बल यनफुजु बैउहु, बल्कि उस मौकूफ अलैह की बै भी इसके अंदर नाफिज हो जाती। कसाइरी अमला की ही, जैसे उसकी बाकी मिल्कियतें हैं, जैसे उसकी बाकी ममलूका चीजें हैं, जैसे उनके अंदर उनको वो बेचना चाहे तो बेच सकता है। तो अगर ये वक्फ उसकी मिल्कियत में दाखिल होता तो उसके लिए इस वक्फ को बेचना भी जायज होता, लेकिन उसके लिए बेचना जायज नहीं। मालूम हुआ ये वक्फ उसकी मिल्कियत में दाखिल नहीं हुआ। तो कहते हैं अगर वक्त जो है मौकूफ अलैह की मिल्कियत में दाखिल हो जाता तो ला यतवक्कफु अलैही, तो ये उस पर वक्फ न रहता। बल यनफुजु बैउहु कसाइरी अमलाकिही, बल्कि इस मौकूफ अलैह की बै भी इसके अंदर नाफिज हो जाती, जैसे कि उसकी बाकी ममलूका चीजें हैं। वली अन्नहु लौ मलकहु, यहां से दूसरी दलील जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं अगर ये वक्फ मौकूफ अलैह की मिल्कियत में दाखिल हो जाता तो फिर इस वक्फ को आगे मुंतकिल नहीं होना चाहिए था अगर मालिक अव्वल ने उसकी शर्त लगाई थी। अगर मालिक अव्वल ने इसकी शर्त लगाई थी तो फिर तो आगे मुंतकिल नहीं होना चाहिए था, लेकिन यह वक्फ आगे मुंतकिल होता है। मसलन देखो, बाज औकात एक शख्स अपना बाग इस तरह वक्फ करता है कि मेरा यह बाग वक्फ है, 5 साल तक इसकी आमदनी ज़ैद पर खर्च की जाए और उसके बाद फिर इसकी आमदनी फुकरा पर खर्च की जाए। तो देखो, मालिक अव्वल ने शर्त लगा दी क्या कि 5 साल इसकी आमदनी ज़ैद पर खर्च की जाए और उसके बाद आम फुकरा पर खर्च की जाए। तो पहला मौकूफ अलह जो है वो ज़ैद है। तो अगर ज़ैद जो मौकूफ अलह है वो इस वक्फ का मालिक बन गया था, तो फिर जब मालिक अव्वल ने इस वक्फ की आमदनी 5 साल के बाद और फुकरा पर सदका की थी, तो फिर तो ये वक्फ ज़ैद से मुंतकिल नहीं होना चाहिए था अगर ज़ैद इसका मालिक बन गया था। लेकिन यह वक्फ ज़ैद से मुंतकिल हो जाएगा 5 साल के बाद। यह मालूम हुआ मौकूफ अलैह इस वक्फ का मालिक नहीं बना, वरना पहले मालिक की शर्त लगाने से यह वक्फ आगे मुंतकिल न होता। तो कहते हैं वली अन्नहु लौ मलकहु, और इसलिए क्योंकि अगर मौकूफ अलैह इस वक्फ का मालिक बन जाता लमन तकल अनहु, तो यह वक्फ उससे मुंतकिल न होता बिशर्तिल मालिकिल अव्वली, पहले मालिक के शर्त लगाने की वजह से कसाइरी अमला की ही, जैसे कि इसकी बाकी मिल्कियतें हैं। भाई जैद की अपनी जमीनें हैं, क्या वो आगे किसी और की तरफ खुद ब खुद मुंतकिल होती हैं? नहीं, वो जो मौकूफ अलह है उसकी और बाकी जमीनें हैं, वो आगे खुद ब खुद मुंतकिल नहीं होती। तो अगर ये मौकूफ अलह इस वक्त का मालिक बन गया था तो इसकी ये मिल्कियत भी आगे मुंतकिल नहीं होनी चाहिए थी। तो कहते हैं कसाइरी अमला की ही, जैसे कि इस मौकूफ अलह की बाकी मिल्कियतें हैं। قال رضي الله تعالى عنه, इस काला से मुराद साहिब हिदाया हैं। साहिब हिदाया वही बात बयान फरमाएंगे जो मैंने जिक्र कर दी कि ऊपर जो मतन में आया कि जब वक्फ सही हो जाए तो खाराजा मिन मिल्किल वाकिफी, तो यह वक्फ वाकिफ की मिल्कियत से निकल जाएगा। साहिब हिदाया बतलाएंगे कि यह साहिबैन का कौल है, वक्फ का वाकिफ की मिल्कियत से निकलना यह साहिबैन का कौल है। तो कहते हैं قال رضي الله تعالى عنه, साहिब हिदाया फरमाते हैं قولوه, के साहिब कुदूरी का जो कौल ऊपर मतन में आया कि खराजा عن ملك الواقف, कि वक्फ जो है वाकिफ की मिल्कियत से निकल जाएगा, यह जो साहिब कुदूरी का कौल है يجب ان يكون قولهما, लाजिम है कि यह साहिबैन का कौल हो। यजिब अन यकून कौलहुमा, लाजिम है कि यह साहिबैन का कौल हो। अलल वजिल्लदी सबका जिक्रुहु, उस वजह से कि जिसका जिक्र मुकद्दम गुजर चुका, वो जो हमने आपको बतलाया था कि साहिबैन के नजदीक वक्फ जो है वाकिफ की मिल्कियत से निकलता है, इमाम साहब के नजदीक तो वक्फ हबसुल ऐन अला मिल्किल वाकिफ का नाम है कि वाकिफ की मिल्कियत उसमें बाकी रहती है। भाई तो कहते हैं यजिब अन यकून कौलहुमा, लाजिम है कि यह साहिबैन का कौल हो। अलल वजिल्लदी सबका जिक्रुहु, उस वजह से कि जिसका जिक्र मुकद्दम गुजर गया। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस, बेहादा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।